देखिए, आप दोनों तरफ ये भी नमाज की बुक चल रही है, आप लोगों का टॉपिक फर्क था, लेकिन अमूमी तौर पे एक छोटी सी बात जो हम सबके फायदे की, और वो क्या है कि खास तौर पे जब आप ये किताब तफहीमु सुन्ना सीरीज की बुक सुनते हैं जिसमें आपको मसाइल सिखाए जाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट मौका होता है अपने अमल को चेक करने का। बहुत सारी चीजें हम शुरू से कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम हदीस सामने देख कर पढ़ते हैं, अगर उस वक्त हम अपने अमल को नहीं बदलते तो मेरा जाती मुशाहदा है कि फिर लोग बाद में भी नहीं बदलते। शरह सदर मांग के जो भी छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही हैं इसके ऊपर अमल की नीयत करें, क्योंकि बाद में फिर भूल जाते हैं। और इन किताबों का असाइनमेंट देना या टेस्ट देना उसी के लिए आसान होता है कि जो करके अमल करने लग जाए। मसलन अगर मैंने नमाज नबी पढ़ाई, मुझे तो नहीं याद होगी वो, कब याद होती है कि रुकू से पहले, मिसाल है कि सूरत सॉरी दुआए कनूत रुकू से पहले करते हैं या बाद में। अब मैं कैसे सोचूं कि उसमें क्या था, मैं अपनी नमाज को देख लूं। अगर सुन के मैंने वही कुछ करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह ताला मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको मानने वाला बनाए। चलते हैं आज के सबक पे, सूरत का आखिरी सबक है, और आपको मालूम है ये बात के आखिर में क्या होता है, जिस्ट होता है। तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए सूरह खुद का आखिरी सबक शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि आज के सबक में से हम वो सब कुछ ले लें जिसका पैगाम इस पूरी सूरत में कई बार दिया गया। नहमतुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सबक नंबर 121, आयत नंबर 102 से 123 सूरत हूद, लेसन नंबर 121, आयत नंबर 102 टू 123, और सूरत का ये आखिरी सबक है। आज के सबक का मेन थीम इस्तकामत है। खुम फा अंजर, पूरी सूरत में अंबिया कराम के जितने भी किस्से आए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पैगाम के साथ दिए गए वो आज इस सूरत के बिल्कुल आखिर में आएगा। और हम सबको भी अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ अपनी नीयतों को चेक करने का मौका देते हैं कि हम भी देखें कि कहीं छोटी छोटी बातों की वजह से मेरे हाथ से ये कलाम छुटता तो नहीं है। सूरत में हमें बस्तियों पर अल्लाह की पकड़ का कानून भी समझ आएगा, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला जब कौमों को पकड़ता है तो उसके बाद फिर लोगों की जो दो किस्में होती हैं उसका तस्करा। फिर एक और चीज जो इस सबक में हम देखेंगे वो है कि क्यामत के दिन के क्या मनाजिर होंगे। कुछ लोग खुशबख्त हैं तो खुशबख्तियों में हैं, और कुछ बदबख्त हैं। फिर आज के सबक में पांच नमाजों की तरफ इशारतन आयत भी मिलती है। ये आपको भी मालूम है कि कुरान पाक में बराह रास्त आयतों के नाम, सॉरी कुरान पाक में बराह रास्त नमाजों के नाम औकात उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई, इसीलिए हम आपको साथ तफहीमु सुन्ना की किताबें पढ़ाते हैं ताकि सुन्नत की रोशनी में आप अपने नमाजों को चेक करें। तो आज के सबक में इशारतन पांच नमाजों का तज़किरा मौजूद है, और फिर पूरी सूरत का खुलासा। शुरू करते हैं आयतों के साथ साथ रहते हुए अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हम सब के वक्त में बरकत दे। हर वो चीज जो आपके सुनने के बीच में रुकावट बने वो इस वक्त आपकी दुश्मन है, चाहे वो आपका अजीज सेलफोन ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला के बीच में दूसरी चीजों को लाएंगे तो अल्लाह ताला की बात समझ नहीं आएगी। शुरू करते हैं आयत नंबर 102, औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी ही होती है पकड़ आपके रब की जब वो पकड़ता है बस्तियों को जबकि वो जालिम होती है। कैसी है उसकी पकड़? इन अख्ज़हु अलीमुन शदीद, यकीनन इसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक भी है और बड़ी सख्त भी है। पिछली आयतों में मुसलसल हमने 3, 2, 5 और उसके बाद फिर एक तकरीबन 7 मुख्तलिफ कौमों के ऊपर अल्लाह ताला की पकड़ की बातें पढ़ी। इन सबको पढ़ते और सुनते वक्त दिल में ख्याल आ जाता है कि क्यों इन बेचारों के साथ ये हुआ, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो कजा अली का ऐसे ही होगा, दिस इज अल्लाह आदत, दिस इज अल्लाह सुनना। और आपको इस वक्त वो हदीस याद रखनी चाहिए जो हमने इस सूरत के इंट्रो में पढ़ी थी, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شی بطنی ہودن و اخواتها، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے. اتنا زیادہ قوموں پر عذاب کا ذکر اس صورتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگ گئی کہ کہیں میری قوم کے اوپر بھی پکڑ نہ آئے. تو اللہ کی پکڑ کا تھوڑا سا قانون سمجھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یملی للظالم، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. کب تک؟ حتی اذا اخذہ، پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے، لم یفلت ہو، پھر اس کو مہلت نہیں دیتا. یعنی اللہ اچانک نہیں پکڑتا، پہلے مہلت دیتا رہتا ہے، حجتیں تمام کرتا رہتا ہے، لیکن لوگ نہیں سنتے. پچھلی قوموں کے تذکروں میں ہم نے دیکھا کہ نبیوں نے ہر ممکن کوشش کی، ایوری پاسبل مین یوز کیا، لیکن قوم شعیب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ما نفقہ، ہم تو سمجھتے نہیں تیری باتوں کو، تیری تو بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی لوگوں کو بات؟ کیونکہ لوگوں کی اکثریت نماز اور روزے کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ اس سے عملی باتوں پہ چوٹ کم پڑتی ہے. لیکن سب سے مشکل بات جو لوگوں کو لگتی ہے وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے. تو جب قومیں ڈھٹائی کا ثبوت دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پکڑ لیتا ہے. یہی بات آج ہم سب کو بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں پکڑا. آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آخر کیوں، وہ کذالک کہہ کر اللہ نے کیوں یہ کہہ دیا کہ ہاں میں تو ظالم کو ایسے ہی پکڑوں گا. تو نوٹ کیجئے گا کہ یہاں ظالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہدایت کا موقع ملا لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی. اللہ کا نبی بہت بڑی نعمت تھا لیکن انہوں نے اس کے آگے عذر رکھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہدایت کے راستے سے دور کیے ہوتے ہیں. تو ہدایت کے راستے کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے. اور یہ دو وہ رکاوٹیں ہیں جو کبھی نظر نہیں آتی. کبھی آپ نے ہرڈل ریس دیکھی ہوگی، راستے میں کبھی کرسی رکھ دیتے ہیں، کبھی میز رکھتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے بچ کے جانا ہوتا ہے. ایسی مخالفتوں اور ایسی رکاوٹوں میں سے گزرنا آسان ہے، لوگ فن بھی سمجھتے ہیں، انجوائمنٹ کے نام پہ کر گزرتے ہیں. لیکن یہ وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، جس میں سب سے پہلی چیز خواہشات ہے. خواہش ایک ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ جو ہدایت کے تقاضوں کو نبھانے نہیں دیتی. لوگ شروع کر لیتے ہیں ہدایت کا سفر، لیکن جب ہدایت ان سے نبھتی نہیں ہے نا، تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ایسے لوگ قوم شعیب میں ہم نے دیکھے، دولت مند بھی تھے اور اللہ نے ان کو دنیاوی اسودگیاں بھی دی ہوئی تھی، تو لہٰذا حضرت شعیب کی باتیں ان کو سمجھنا آئی. دوسری بہت بڑی رکاوٹ جو ہدایت کے راستے میں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، اور وہ انا ہے. خواہشات اور انا، یہ دو ایسی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف آتے آتے روک لیتی ہیں، اور لوگ اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو انا پرست ہو جائیں، پھر ان کی انا کو کچلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ پکڑ لیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ترس نہیں آتا، تو میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ جب آپ کاکروچز مارتے ہیں تو آپ کو ترس آتا ہے؟ چونٹیوں کو مارتے ہوئے ترس آتا ہے؟ دیمک کو مارتے ہوئے اثر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع دیے، بار بار ہدایت کی ونڈو بلنک کی، پاپ اپ ہوا ہدایت کا پیج، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جب وہ اپنے کاموں میں لگے رہے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اپنی فکر کریں، ہر ایک اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ اللہ کو پکڑنا آتا ہے. اب دیکھیے کہ گمراہ لوگوں کو خوشحال دیکھنا، یہ ظاہر پرستوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. خواہش پرست لوگ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود لوگ بڑے خوش ہیں، کتنا انجوائے کیا انہوں نے، کتنا مزہ آیا ان کو، کیا خوب، وٹ سو وٹ سو ایور، تو پھر ایسے لوگوں کا ہدایت کی طرف آنا اور ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسی باتیں کر کے بھی تو یہ لوگ خوش ہیں، تو ہم ایسی چیزوں کو کیوں پھر اتنا مشکل کریں اور اتنا بودر نہ کیا کریں آپ ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بودر نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو مٹا تو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس طرح بستیوں کی بستیوں کو ختم کرتا ہے. اگلا نقطہ اس آیت میں دیکھیے گا کہ اذا اخذ القرا، اللہ نے یہ کہنے کی بجائے کہ اذا اخذ اہل القرا، بستی والوں کو پکڑنا، پکڑ تو بستی والوں کی ہوئی تھی نا، یہ کیوں کہہ دیا کہ بستیوں کو پکڑ لیا؟ یہ بہت زیادہ جوش کا انداز ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ کسی کو یہ کہنا कि फुलां बहुत बहादुर है, या किसी को ये कहना कि वो शेर जैसा बहादुर है, और किसी को ये कह देना कि वो तो शेर है, ये तो मेरा शेर है। क्या फर्क है कि शेर बोल के शेर की सारी सिफात ली। बिल्कुल यही असूल इधर नजर आ रहा है आपको कि बस्ती बोलकर बस्ती वाले मुराद लिए गए। और दूसरी बात, अगर आप कौम लूत के अमल में देखिए तो बस्तियां भी तबाह हुई थी, अपसाइड डाउन हुई, घर टूटे, जमीन में होल पड़ गया, बहरे मुर्दार के नाम पे आज भी गंदे पानी की जगह मौजूद है। तो वो जगह भी बदबख्त हो जाती हैं जहां लोग गुनाह करते हैं, क्योंकि वही जालिमा इन अख्ज़हु अलीमुन शदीद। सूरत बुरूज में आता है इन्ना बदशा रब्बी कल शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है, बहुत सख्त है। वो एक शेर भी है ना कि ना जा उसके तहमुल पे, कि बड़ी अजीब है उसकी पकड़। अल्लाह पहले ढील देता रहता है, ढील देता है, जैसे आप पतंग को ऊपर चढ़ाते हैं ना, बच्चों को कभी देखा होगा पतंग उड़ाते हैं, पहले डोर ढीली करते हैं, जितनी ढीली करते जाते पतंग ऊपर जाके उड़ने लगती है, और जब फील होता है कि अब पतंग मेरे हाथ से चली जाएगी तो फिर उसके बाद एकदम खींच लगाते हैं, और बाज दफा तो वो पतंग टूट जाती है और बाज दफा वापस आती है। यही अल्लाह सुबहाना तला की आदत है। तो हम सबको अपने ऊपर लेके सोचना है, अगर नाफरमानियों के बावजूद मुझे रिस्क मिल रहा है, माल मिल रहा है, शोहरत, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, जो कुछ भी दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, तो कहीं ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर पकड़ ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पकड़ से बचाए। अल्लाह ताला की पकड़ से बचने की एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लम ने सिखाई, उसका तर्जमा ही कम अज कम आप लिख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी गज़बी का, ए अल्लाह मुझे कत्ल ना करना अपने गुस्से के साथ। यानी जब तुझे लोगों पर गुस्सा आ रहा होगा तो मुझे उसमें कत्ल ना करना। वला तुहलिकना बि अज़ाबी का, और मुझे हलाक ना करना अपने अजाबों के साथ। और कभी अगर अजाब का फैसला हो, वा आफीना मिन कबली जालिक, और अगर तू किसी कौम को पकड़ने का इरादा कर ले तो मुझे उससे पहले आफियत दे देना। हम सब जमीन के जिन टुकड़ों पर रहते हैं, जहां चारों तरफ कुफर भी है, इल्हाद भी है, और होमोसेक्सुअलिटी भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब भी है, तो ये दुआ हमारी जुबान पे रहनी चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बस्ती को पकड़ता है तो घुन के साथ गेहूं भी पिसता है, सबको पकड़ लेता है। लेकिन ये अलग बात है कि जिनकी नीयत अच्छी थी, कियामत के दिन वो अपनी नीयतों के बल पे उठाए जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली आयत में बात थोड़ी मजीद वाजे हुई, आयत 103, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ अज़ाब अलआखिरा। यकीनन इसमें निशानी है इन लोगों के लिए जो आखिरत के अजाब से डरते हों। कौन सा है वो दिन? ज़ालिका यौमु मजमू लहुन्नास, वो एक ऐसा दिन है जिसमें लोगों को जमा किया जाएगा। व ज़ालिका यौमु मशहूद, और वो दिन है पेशी का, उस दिन लोग पेश किए जाएंगे। अगर आप इस एक आयत के अंदर से क्यामत के नाम ढूंढना चाहें तो आपको कितने नाम मिले? पहले देखिए अज़ाब अल आखिरा, आखिरत क्यामत का फेमस नाम है, आप कह सकते हैं कि असली नाम यही लगता है। फिर दूसरा नाम यौम मजमून, जमा होने का दिन। क्यों? इसलिए कि पहले और आखिरी सब जमा किए जाएंगे। अव्वलीन वल आखरीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक आने वाला हर बंदा उस दिन जमा कर दिया जाएगा मैदाने महशर में। इसी तरह यौमुल मजमू क्यों कहते हैं? बदन रूहों से मिल जाएंगे, जमा हो जाएंगे। वह इजन नफूस ज़ुव्विजत, आगे हम पढ़ेंगे तीसरे पारे में कि जब जमा कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी रूहें जिस्मों से, इसी तरह जमा होंगे इंसान के आमाल और उसका अंजाम। मौत की सूरत में नामे आमाल छिन जाता है, लेकिन क्यामत की सूरत में वापस उनको पकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इकरा किताबक कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। इसी तरह अगला नाम यहां क्यामत का आया है यौमुल मशहूद, शाहिद, शहादा, शोहद, ये सब वही लफ्ज है। क्यामत के दिन को पेशियों का दिन कहा गया। क्यों? नंबर एक, सब पेश किए जाएंगे अल्लाह के सामने। नंबर दो, उस दिन गवाहियां पेश होंगी, कुछ इंसानों के हक में और कुछ इंसानों के खिलाफ। और इसी तरह उस दिन अंबिया कराम भी गवाहियां देंगे उम्मतों के बारे में, और उम्मत मुस्लिमा भी शहादत देगी دوسری امتوں کے جھٹلانے پر. دوسرے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں, کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شہداء علی الناس. تو کیا پتا چلا کہ یوم مشہود, کیا قرآن تیسرے پارے میں قسم بھی کھائے گی, وشاہد ومشہود, گواہی دینے والا اور جس کی گواہی دی گئی دونوں پکڑے جائیں گے. اپنے پر لیجئے, کبھی خدا نخواستہ عدالت میں جانا پڑے اور کسی کے خلاف گواہی دینی پڑے یا کوئی آپ کے خلاف دے, بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. ایسے وقتوں میں انسانوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, قیامت کے دن کون کون میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا, ہم اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آج ہم دنیا میں لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اس نے مجھے یہ کہا تو کیوں کہا, اس نے میری انا کو مجروح کیا, اس نے مجھے ہرٹ کیا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب لوگ سچ کی بنیاد پر ہماری اصل کھو دیں گے. اسی طرح یوم المشہود اس لیے کہ اس دن زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے. سورہ زلزال میں آتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے کہ جہاں بیٹھ کے لوگوں نے اچھے یا برے کام کیے. اسی طرح یوم المشہود کیوں ہیں, کیونکہ اس دن جسم کے اعضاء باڈی پارٹس گواہیاں دیں گے. ہم پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے منہوں پہ مہر لگا دے گا تو لوگوں کے اعضاء بولیں گے, ان کی کھالیں بولیں گی. تو ایسے لگتا ہے کہ قیامت کے دن تو سب ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے میرا یہ لے لیا, اس نے مجھے یہ کیا. اور اس دن لوگ شکر کر رہے ہوں گے کہ لوگوں نے ہمیں برا کہا, تاکہ ہماری ہمیں آج ان کی نیکیاں مل جائیں اور آج ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں. اور حقیقت ہے کہ قیامت کا دن کافروں پہ بہت بوجھل ہوگا, کیونکہ ساری گواہیاں ان کے خلاف پڑ رہی ہوں گی. فرشتوں کی, رسولوں کی اور تمام مخلوق کی گواہیاں کفار کے پیچھے ہوں گی, ان کے مخالف ہوں گی کہ انہوں نے اللہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہ مانی. کیا ہوگا, آئیے ذرا اگلا منظر دیکھیے, آیت 104. بالکل ان کو سنتے وقت آپ لوگ اپنے آپ کو میدان محشر میں کھڑا محسوس کریں کہ ومن اخرہ الى سوری ومن نؤخره الا لاجل معدود, اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں. کس کو؟ ان گواہیوں کو اور اس حساب کتاب کو. آج دنیا میں بھی لوگ غلط کام کرتے ہوئے دکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوراً نہیں پکڑتے, ایک گھڑی معین ہے, اس کو باقاعدہ گن گن کے اور حساب لگا کے رکھا ہوا ہے. ہوگا کیا جب وہ دن آئے گا؟ آیت 105, یوم یاتی لا یتکلم نفس الا باذنہ. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا, نفس کلام نہیں کر سکے گا, ہاں مگر الا باذنہ, مگر اس کی اجازت, اس کے اذن کے ساتھ. اور ہوگا کیا اس کے بعد؟ فمنہم شقی و سعید. کچھ تو انسانوں میں ایسے ہوں گے جو دن شقی ہوں گے, بدبخت ہوں گے, اور کچھ سعید ہوں گے. دونوں کا منظر مختلف ہے. کیا؟ آیت 106, فم الذین شقوا, بس وہ لوگ جو بدبخت ہیں, ففی النار, وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. وہ آگ میں رہیں گے, ہمیشہ کا لفظ کاٹ دیں, ففی النار, وہ آگ میں رہیں گے. حالت کیا ہوگی؟ لہم فیہا زفیر و شہیق, اس میں ان کو چیخنا بھی ہے اور دھاڑنا بھی ہے. زفیر اور شہیق کی آوازیں ہوں گی جہنمیوں کی قیامت کے دن, درد اور کرب کی وجہ سے چیخو پکار کریں گے اور پھنکارے ماریں گے. یہ کون سی آوازیں اور یہ کیا منظر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو اللہ کو پتا جائے گا. آج تھوڑی سی تاخیر ہے تو تم سمجھتے ہو کہ قیامت آنی کوئی نہیں, آئے گی, بس ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے. بات نہیں کوئی کر سکے گا. کیسی بات؟ اللہ سے کسی کے بات کرنے یا کسی کی شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, مگر جس کو اللہ اجازت دے. حدیث شفاعت کے نام پر ایک حدیث معروف ہے صحیح بخاری میں. خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا یتکلم یوم اذن, کوئی اس دن بات نہیں کرے گا, الا الرسل, سوائے رسولوں کے. قیامت کے دن صرف رسول بات کریں گے, اور بات بھی کیا کریں گے, وداور رسولی یوم اذن, اور نبیوں کی اس دن دعوت یا ان کی پکار کیا ہوگی, اللہم سلم سلم, یا اللہ ہمیں بچا لے, یا اللہ ہمیں بچا لے. سوچ سکتے ہیں اس دن کی وحشت کو, اس دن کی گھبراہٹ کو, کیا حالات ہوں گے اس دن لوگوں کے, کس طرح بدبختی ان کے سامنے کھڑی ہوگی, کہ آج بڑی بڑی زبانیں چلتی ہیں اللہ کے حکموں کو سن کر, کیا ہوتا ہے جی, کچھ نہیں ہوتا جی, دیکھ لیں گے اور وہ ہوگا, ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی بول رہے ہوتے ہیں, جی سر کو بھی ہلا رہے ہوتے ہیں, اور زبان تو رکتی ہی نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ وہاں خاموش ہوں گے. آج دنیا میں لوگوں نے کتنی باتیں بنا لی, فلاں اللہ کے چہیتے, ہمارے سفارشی, یہ بزرگ ہیں, یہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے, جب تک ان کو ہمیں نہیں جانے دیا جائے گا, ان کو یہ بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے وسیلے لیتے تھے, اور یہ جنت کے راستے میں مچلیں گے اور اللہ کے آگے لاڈ کریں گے, اور جب تک اللہ نہیں چھوڑے گا یہ وہاں سے نکلیں گے نہیں. اللہ کہتے ہیں اتنی اداؤں کی تو جرت ہی نہیں ہوگی, بڑے سے بڑے انسان اور کسی بڑے سے بڑے فرشتے کی بھی اس دن ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے کوئی بات کرے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوں گے. اللہ اکبر, کتب علی نفسہ الرحمہ. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ رحم پہ, اللہ تعالیٰ از سو ریلیکسنگ. لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, شاید اللہ اسمائل کرتے ہوں گے, کرنے دو, لیکن قیامت کے دن اللہ کو بہت غصہ آیا ہوگا. اور آپ نے صرف اپنی سمجھ کے لیے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو انسانوں کو دیکھا ہوگا, کچھ لوگوں کو غصہ بالکل بھی نہیں آتا یا بہت کم آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے, بلکہ جن کو نہیں آتا جب ان کو آ جائے تو دل زیادہ ڈوبتا ہے. ایک تو جس کو ہر وقت ہی عادت ہے گرجنے کی, بولنے کی, آپ کہتے ہیں ابھی گرج کے چپ ہو جائیں گے, لیکن جن کو نہ آئے اور وہ ایک لفظ بھی بول دیں, اس وقت آپ کے دل کا حل کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حلم والا, اس دن جب وہ غصے میں ہوگا تو پیچھے روایت آپ سن چکے ہیں کہ آدم بھی نہیں بولیں گے کہ میں نے پھل کا درخت کا پھل چکھ لیا, اور اس دن ابراہیم نہیں بولیں گے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کر دی, میرے سے جھوٹ ہو گیا جس کو توریہ کہتے ہیں, اور اسی طرح کی طویل روایت سوچے. اپنے اوپر لے کے سوچئے میرا اس دن کیا حال ہوگا. کیا کسی کا یہ کہنا کہ فلاں کی اللہ کے اوپر بڑی چلتی ہے, اور ان کے بھروسے پہ ان کی سفارشوں کے نام پہ اپنے نام اعمال کو سیاہ کرنا, کیا یہ خوشبختی کی علامت ہے؟ ہرگز بھی نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو ایک انسان اپنے دل سے آج دنیا سے دل سے نکالے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور یہ جو لفظ دو آئے ہیں نا کہ اس وقت جہنم میں جا کر ان کی حالت کیا ہوگی, پہلے یہ لفظ دیکھیے کہ شقیم و سعید. شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقاوت, سختی کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ نمبر ایک, سخت دل کٹھور, اور بدبختی کے لیے بھی آتا ہے, اور دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں معنوں میں ربط بھی بہت خوبصورت ہے. سخت دل کٹھور لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بدبختی ہوتے ہیں, کوئی ان سے پیار نہیں کرتا, کسی کو یہ اچھے نہیں لگتے, لوگ ان سے اپنے دل کی بات نہیں کرتے, لوگ ان کی موجودگی میں مس فٹ فیل کرتے ہیں. بے رحم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, کیونکہ ایسے لوگ بے رحم ہوتے ہیں, اور پھر بدبخت بھی ہیں. تو آپ کہہ سکتے کہ شقی کون ہے؟ بدبخت, بے رحم, اللہ کی رحمت سے دور. سعید کا لفظ سعد سے ہے, سین عین دال. سعد کہتے ہیں خوش بختی کو, سعادت ہے اردو میں بولتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے, وہی لفظ ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا لبیک ربنا و سعدیک, تو جو سعدیک وہ بھی یہی لفظ ہے. تو سعید کہتے ہیں خوش بخت کو, نرم مزاج, جس کے دل میں رحم ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کیسے شقی بنتے ہیں اور کیسے انسان سعید بنتے ہیں. ماں کے پیٹ سے نہیں جن ایسے آتے. ہاں, اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ ماں کے پیٹ میں ہی فرشتے سے لکھوا دیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ چار ماہ کا جو حمل ہو جاتا ہے تو ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کے بچے کی جو چار باتیں لکھتا ہے, اس میں ایک یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا, اور وہاں سعید اور شقی سے مراد جنتی یا جہنمی ہے. تو ان دونوں میں ایک معنی یہ بھی لکھ لیجئے کہ شقی سے مراد جہنمی اور سعید سے مراد جنتی ہوگا. اللہ نے وہاں لکھ لیا تھا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ کیسے کام کریں گے. لیکن اگر آپ اور میں اپنے پر لے کے سوچیں کہ ہم کیسے بدبخت ہوتے ہیں, نمبر ایک گناہ کر کے, اور پھر گناہ پہ شرمندہ نہ ہو کے. سعید کیسے بنیں گے؟ اگر کبھی گناہ ہو گیا تو اور نیکیاں کیجئے, توبہ استغفار کیجئے, تو شقاوت سعادت میں بدل جائے گی. اسی طرح انسان شقیق ہوتا ہے کہ نیکی تو کر لی اور اس پہ اترانے لگا تکبر کی وجہ سے, وہ اس نیکی کے اثر کو زائل کر دیتی ہے. آپ اپنے اوپر ہی لے لیں, کوئی آپ کو چائے کا کپ پلا دے, بعد میں آپ کے سامنے ڈھینگے مارنے لگے, احسان جتلانے لگے, تو آپ کو اس چائے کے کپ کی کیا خوشی ہوگی؟ تو اللہ کو ایسی نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں جس کے بعد انسان اترانا شروع کر دے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا موقع دیتے ہیں. جو لوگ نیکی کے موقع کو اویل کر لیتے ہیں نا, وہ سعید بن جاتے ہیں, اور جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں وہ شقی بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی وقتی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دولت بھی دی ہے, مال سب کچھ دیا ہے, لوگ بھی یہ سوچنے لگتے ہیں اور وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے یہاں عموماً گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, لیکن وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو دنیا میں کسی کو وقتی طور پہ کچھ اچھی چیزوں کا مل جانا یہ سعادت کی علامت نہیں ہے. اس سعادت کو کیا کہیں گے جس کے بعد موت کا فرشتہ آئے اور سب کو چھین کے آپ کو مجھے ایک مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. اس لیے جب کبھی انسان کو یہ دھوکہ ہونے لگے کہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت خوش ہوں, تو پھر میں بہت اچھا ہوں تو اللہ کی نظروں میں بھی ایسا ہی ہوں گا, تو یہ انسان کی ناسمجھی کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہاں پھنکارے ماریں گے, اور اس طریقے سے وہ وہاں بول رہے ہوں گے کہ حالات کیا ہوں گے کہ ظفیر و شہیق. ظفیر اور شہیق گدھے کی دو آوازوں کے لیے آتا ہے. آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے, ڈھینچو ڈھینچو. گدھا جب بولتا ہے نا تو بہت آواز اندر کھینچتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو باہر چھوڑتا ہے. اصل میں جہنمیوں کو درد, کرب اور تکلیف کی وجہ سے جو ان کے منہ سے کربلاتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی آوازیں ہوں گی نا, اس کی طرف اشارہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. دنیا میں ان کی زبانیں اللہ کے حکموں کے آگے بہت چلتی تھی, وہاں بھی جا کے دیکھے کہ اللہ نے ان کی زبانیں کیسی کر دی. کب تک یہ سب ہوگا؟ یہ جہنم کا منظر, آیت 107, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہاں ہا سے مراد جہنم. ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ زمین و آسمان رہیں گے. ہاں مگر, الا ما شاء ربک, مگر جو تیرا رب چاہے. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن قرآن کی مشکل آیتوں میں سے ہے. یہ قرآن پاک کا واحد لفظ ہے, واحد مقام ہے, سوری, یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں خالدین فیہا کے بعد کچھ ایگزمپشنز بھی ہیں. استثناء, ایکسپٹ, ہاں ہمیشہ رہیں گے مگر نہیں. ہمیشہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے جنتیوں کے لیے آتا ہے, ہم فیہا خالدون, دیٹس اٹ, اس پیٹ ختم ہو جاتی ہے یا موضوع پلٹ جاتا ہے. جہنمیوں کے لیے ہم فیہا خالدون, لیکن یہاں کچھ مختلف ہیں. چھوٹی سی آیت میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اس آیت سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا کہ چونکہ ادھر یہ کہہ دیا گیا کہ ما دامت السماوات والارض, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, اور بس جتنی دیر زمین و آسمان قائم رہیں گے اتنی دیر یہ بھی رہیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ کچھ نے اس کی تفسیر کی کہ جہنم میں لوگ اتنی دیر رہیں گے جتنی دیر دنیا میں زمین اور آسمان قائم رہے تھے. سمجھ رہے؟ دنیا کا جتنا بھی انفینٹ ٹائم ہمیں دکھ رہا ہے, اللہ کا تو اس کا پتا ہے. تو جتنا ڈیوریشن آف ٹائم اس دنیا میں زمین اور آسمان رہے, اتنی دیر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد بالآخر نکال دیا جائے گا. حالانکہ یہ تاویل ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ما دامت السماوات والارض, یہ عربوں کا محاورہ ہے, پروورب ہے. جب کسی کی ایور لاسٹیسٹی یا ہمیشگی کو ثابت کرنا ہوتا تھا تو عرب یہ جملہ بولا کرتے تھے, ما دامت السماوات والارض. یہ ان کا محاورہ تھا, روزمرہ کی گفتگو تھی, اور اس کو دوام کے لیے ثابت کرتے تھے. कहते क्या थे, हाज़ दाइमुन दवाम समावाति वल अर्थ, यानी ये चीज उसी तरह हमेशा रहेगी जैसे जमीन और आसमान रहे। वही मुहावरा अल्लाह ताला ने इधर इस्तेमाल किया। ठीक है, इतनी बात वाज़े है। फिर इसी तरह आप देखिए कि लोगों ने एक तीसरी भी इसकी तफसीर की कि दुनिया के जमीन और आसमान तो वक्ती थे, वो तो खत्म। इज़ असमान फतरत, सूरह इन्फितार के शुरू में हम पढ़ेंगे कि जब आसमान फट जाएंगे। सूरह इंशिकाक के शुरू में आप पढ़ेंगे जब समा उनशक्कत, जब आसमान फट जाएंगे। वज़ीनत लिरब्बी हवा हुक्कत, ठीक है, वइज़ल अर्दु मुद्दत। तो हम सब ये जानते हैं कि क़यामत की सूरत में ये जमीन आसमान तो खत्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहां समावात और अर्द के साथ दुनिया के जमीन आसमान नहीं मुराद, बल्कि जन्नत या जहन्नम के जमीन और आसमान मुराद है। कितनी बारीकियां होती है ना, हम तो और चीजों पर गौर करते हैं ना, इल्म वालों ने इन चीजों पर गौर किया। ठीक है, तो वो नहीं फना होंगे तो ये भी नहीं होंगे। इसी तरह सूरत इब्राहिम की आयत 48 में भी एक किसी किस्म का इशारा मिलता है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, उस दिन जो जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे। तो यहां फिर आखरत के जमीन और आसमान मुराद है यहां के नहीं। और दूसरी बात है कि सिर्फ एक आयत से हम पूरे कुरान और हदीस में कई बार आने वाली बात को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो खुलासा क्या निकला कि मुशरिक और काफिर हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए दिल में ना रखे। हाँ मगर इल्ला माशा, ये कौन है इसको समझ लीजिए तो हमें भी थोड़ी सी अपनी औकात समझ आ जाएगी। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके जो आपका रब चाहे। अब अगर इसको आप देखें तो माँ के फिर कई मानी है, सिवाय इस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे, एक मतलब है। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जितना वक्त अल्लाह चाहेगा उनको जहन्नुम में रखेगा और खत्म। तो सिंपल पहला इसका मानी तो क्या हुआ कि ये जहन्नुमी जब तक अल्लाह चाहेंगे जहन्नुम में रहेंगे और उसके बाद खत्म, तो फिर यहां सिंपल बात है। दूसरा मानी इसमें माँ बमानी मन, जो यानी माँ होता है गैर आकिल के लिए, बेजान चीजों के लिए, और मन होता है आकिल के लिए। आकिल से मुराद जानदार जैसे इंसान और जिन्नात है। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ इल्ला माशा रब्बुक से मुराद अहले तौहीद है। ये मौजू इंशाल्लाह हम 14वें पारे की पहली आयत में तो बहुत ही डिटेल से करेंगे कि रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त काफिर कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। वहां जाके आपको उसकी बहुत सारी इंशाल्लाह तफसीरें लिखाएंगे, लेकिन उसमें से एक तफसीर क्या है कि अहले तौहीद यानी जिन्होंने शिर्क नहीं किया लेकिन गुनाह थे, हत्ता के की वजह से कुछ चीजें भी थी, तो ऐसे लोग जो हैं उनको बिल आखिर उनके गुनाहों की सजा देने के बाद अल्लाह ताला जहन्नुम से निकाल देगा। ये ऐसी है जैसे आदि मुजरिम को उसकी सजा पूरी होने के बाद निकाल दिया जाता है, लेकिन जो उम्र कैद वाले होते हैं उनको नहीं निकाला जाता। तो उनको वहां से निकलता देखकर दूसरे जहन्नुमी रश करेंगे कि काश आज हम मुसलमान होते तो हम भी जहन्नुम से निकल आते। तो क्या पता चला कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि जो इंसान को जहन्नुम से निकलवा देगा बिलाखिर। लेकिन क्या जहन्नुम में कुछ दिन भी रह सकते हैं? कभी ऐसा सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तो बात है, अगर हमें रहना भी पड़ गया तो रह लेंगे। तो फिर इसके लिए तो यही है कि चंद लम्हे के लिए उंगली आज स्टोव पे रख के देख ले, दुनिया की आग जहन्नुम की आग से 69 टाइम ठंडी है, धो धो के भेजी गई है, जब उसकी हल्की सी लप भी बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नुम में कैसे रहेंगे। इस पर पूरा लेक्चर है कि हमारे गुनाह कैसे कैसे धुलेंगे, और उसमें आखिरी मंजर यह है कि अल्लाह कुछ गुनाहों को जहन्नम की भट्टी में डाल के जाके फिर खत्म करेगा, और जब फिर उनके गुनाह पूरे हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकालेगा। और हदीस में यहां तक आता है कि कुछ लोग जब बिल आखिर जहन्नम से निकाले जाएंगे तो उनको फिर एक जन्नत के बाहर एक नहर है उसमें डुबकी दी जाएगी, नहरे हयावान उसका नाम आता है, वहां डाला जाएगा तो वहां से उनके जिस्म उगेंगे। क्योंकि जब उनको जहन्नम से निकाला था तो वो कोयलों की तरह बन चुके थे, जले भुने थे, अल्लाह ताला उनको पानी में डालेगा फिर वहां से उनके नए जिस्म उगेंगे, लेकिन उनके माथों पे इत्तकुर रहमान लिखा होगा, रहमान के आजाद करदा कैदी। अतीक कहते हैं आजाद करने वाले को, अतीक अताका से, उतका उसी के अंदर जरा और फर्क बन जाता है। तो जब वो जन्नत में इधर उधर घूमे फिरेंगे तो उनसे उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैदी हैं। कभी आपने देखे कुछ कैदियों को बेल पे छोड़ते हैं तो उनके हाथ में एक पट्टा डाल देते हैं, कुछ के साथ एक नेविगेशन लगा देते हैं कि वो एक खास एरिया से बाहर नहीं जा सकते, तो लोगों को पता चलता है। इसी तरह की एक पहचान होगी कि ये गुनाहगार जहन्नमी थे जो निकले हैं। फिर उससे उनको शर्म आएगी, कुछ अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला उस निशान को उनके माथे से हटा देंगे। इल्ला माशा रब्बुक, लिखिए जरा इस माँ के नीचे अपने आप को, चाहती हूँ कि वहां जाके तौबा करूं। देखिए आज दुनिया में खुद को पाक कर लें, आज खुद गुनाहों को छोड़ दें, आसानी रहेगी, लेकिन अगर वहां जाके पाक हुए तो बड़ा सख्त हिसाब होगा। ऐसे लोगों को फिर उस वक्त फिक्र करनी पड़ेगी। नाफरमान मोमिन हमेशा से जो हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेंगे, कुछ अरसा रहने के बाद निकलेंगे। और यहाँ इल्ला माशा से वो लोग भी मुराद है कि जो जहन्नुम में गए लेकिन किसी सिफारिश की बुनियाद पर उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा, नबी वली या उनकी औलादें, उनका हेफ्स, या जो जो हदीस में बातें मिलती हैं, यानी वो किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकल आएंगे। तो हम तो किसी भी जगह नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा मामला हो, हम तो इस तरह के नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह किसी को पकड़े और हमेशा के लिए पकड़ ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा सके, क्योंकि अल्लाह तआला ने दुनिया में भी लोगों को बहुत मुहलत दी थी, इसीलिए फरमा दिया इल्ला मा दामत अस्समावात वल अर्ध इल्ला मा शा रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। ये रब के फैसलों पे होगा। क्या यहाँ माशा रब्बू का के साथ रसूलू का भी का, नबीयू का, वलीयू का, पीरू का, वलीयू का, कुछ भी नहीं। माशा रब्बू क्यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की चलेगी, याद रखिए। दुनिया में तो हम जैसे नाकारों की भी चलती है, हम ये टिकट बुक कराते हैं कि हमने जाना है, अल्लाह कहता जाओ चले जाओ, हम उसी टिकट पे जाके होके आ भी जाते हैं, लेकिन क्यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की चलेगी। क्योंकि इन्ना रब्बक फ़ालुल लिमा युरीद, बेशक आपका रब जो इरादा करे उसे कर गुजरने वाला है। अल्लाह अकबर, ये है फ़ालुल लिमा युरीद, कोई उसको नहीं रोक सकता। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की मौत का वक्त करीब था, मौत की बेहोशियों में थे। लोगों ने कहा हकीम को बुलाएं, कहने लगे नहीं, मैंने हकीम को दिखा दिया। कहा अच्छा, क्या कहा है उसने? कहा उसने कहा कि फालुल्ली मा युरीद, इशारा था अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने मुझे अब कह दिया कि अब आपकी मौत का वक्त है। कहा जो भी वो चाहेगा वही होगा, तो अल्लाह की मर्जियों को मान लें, बहुत आसानियां हो जाएंगी। जो मर्जियां अपनी करते हैं ना, फिर वो अपनी कितनी को करेंगे, लेकिन अल्लाह की तो माननी पड़ती है। हम कितनी मर्जी करते हैं, लिखिए जरा इस फ़ालुल लिमा युरीद के नीचे, बल्कि 30वें पारे की एक सूरत के आखिर में भी आता है इल्ला माशा रब्बुका इन्नहु फ़ालुल लिमा युरीद, शायद सूरत तारिक या उसके इर्द गिर्द की कोई सूरत है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की मर्जियों पर चलने वाला बना दे। आज ये जो हमें खुद मुख्तारियों का लाल शौक चढ़ा हुआ है ना, मैं जो कर सकती हूँ, पैसा है मेरे पास, अथॉरिटी है मेरे पास, मैं बड़ी हूँ, मेरे पास बड़ी दौलत है, माल है, मैं ये कर सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं के हाथ का खेल है, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। और इस तरह के खेल खेलते खेलते हम अपने आप को मुख्तार समझते हैं। एक और जुमला भी ना समझी से लोग बोलते हैं मोहब्बत में कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे। नहीं, फ़ालुल्ली मा युरीद, वो जो चाहता है वो होता है। एक शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने ये बात कह दी थी कि माशाअल्लाह व माशीता, ए नबी वो होगा जो अल्लाह ताला चाहता है और जो आप चाहते हैं। तो आपने कहा जलतनी लिल्लाह निदा, क्या तू मुझे अल्लाह का शरीक बनाता है? नहीं, बल माशाअल्लाह वहदा, वो होगा जो कि अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लें। एक अल्लाह की चाहत है, एक हमारी चाहत है। अल्लाह की चाहत को अपनी बना लें तो वो आपकी चाहत को भी रंग लगा देगा। ऐसे लोग तो दुनिया में अल्लाह को फालुल लिमा युरीद समझकर उसकी बात को मान लेते हैं, उनको वहां क्या किया जाएगा? आयत 108, वह मल्लजीन सुईदू, और वो लोग जो के खुशबख्त हुए, नेकबख्त हुए, फफिल जन्ना, फिर वो जन्नत में जाएंगे, कब तक? खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मादामत समावात वल अर्थ, जब तक आपका रब जाए, सॉरी, जब तक ये आसमानो जमीन रहे। हाँ मगर, इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो कि आपका रब चाहे। क्या ये जन्नत लोगों को उनके अमाल पे मिली? कहा बिल्कुल भी नहीं। अताउन गैर मजजूज, ये तो एक ऐसी बख्शिश है जो कभी कभी खत्म ना होगी। तकाबुल करके देख लीजिए, पीछे जहन्नम की आयत थी, बात खत्म कर दी। मा दामत इस समावात वल अर्द, आसमान और जमीन जब तक रहेंगे, इल्ला माशा रब्बु, दैट्स इट। किसने कब तक जहन्नम में रहना है? अल्लाह का फैसला है। इन्ना रब्बा का फालु लिमा युरीद, एक दो टोक अंदाज था, लेकिन जरा जन्नत के अंदाज में अल्लाह का अंदाज देखिए। पहली बात, उम्मल्लजीना सुईदु फिल जन फिल जन्ना, ये तो बात सिंपल है, हम जन्नत में जाएंगे और लोग अल्लाह हमको ले जाएगा। कब तक रहेंगे? सेम वही तफसीर जो मा दामत समावात वल अर्द की जहन्नम के तनाजर में हो गई, ये भी वाजे हो गई। इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो आपका रब चाहे। इससे क्या मुराद है? जब तक आपका रब चाहे, और क्या इधर मां मन के मानों में है तो समझ लीजिए, अगले लफ्ज ने बात को वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला की जन्नत में जाने के बाद कोई जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। यहां एक जुमला लिख लीजिए, आपका अकीदा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहन्नम में दाखिल किए जाने के बाद बहुत सारे लोग उसमें से निकाले जाएंगे, हत्ता कि वो मारूफ रिवायत भी आपको याद होगी कि जिसके दिल में तक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसको भी निकाल लेगा। और इसका ऑपोजिट भी कहा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है, जहन्नम से निकाले जाएंगे, लेकिन जन्नत के मामले में अल्लाह का कानून फर्क है, जो उसकी रहमत है। एक बार किसी आंख ने जन्नत की कोई नेमत देख ली, वहां दाखिल हो गया, तो अतान गैर मजजूर नहीं होगी। देखिए, दो तरह से हो सकता था ना मामला। कुछ लोगों ने नेकियां की होती हैं तो गुनाह भी किए होते हैं, दुनिया में तो मामला चलता ही रहता है, लेकिन कुछ के मामले अल्लाह ताला जहन्नम में डालकर उनकी सजा को पूरा करके फिर जन्नत देंगे। ठीक है, ये कानून तो समझ गए ना आप। अब ये भी तो हो सकता था ना, अपने ऊपर लेके बताती हूँ कि मैंने कुछ नेकियां की और मेरे से कुछ गुनाह भी हो गए, और इतने जबरदस्त किस्म के गुनाह थे कि जिस पे हद लगती है या जिस पे कोई भी सजा मिलनी थी। अब अल्लाह ताला क्या कहे फरिश्तों, चलो जाओ पहले इसको जन्नत में डाल दो, इसको जन्नत दे दो, कुछ दिन जरा जन्नत के मजे ले ले, फिर इसको जन्नत से निकालना और इसको फिर उस जहन्नम में डालना जहां इसको डालना, और फिर जितनी देर सजा देनी है फिर जन्नत में निकाले। मुमकिन था ना, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह ताला बंदे की फितरत को जानते हैं। हमारे यहां एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जाता है कि फकीरी के बाद शाही गवारा हो जाती है, लेकिन शाही के बाद फकीरी नहीं बर्दाश्त होती। गुर्बत के दिन देखे हो ना आपने, तो फिर आसूदगी मिले तो खुशी मिलती है, शुक्र भी निकलता है कि पहले कुछ नहीं थे अब क्या हो गया। लेकिन कभी शाही के बाद फकीरी मिले, अच्छे दिन देखे हो तो फिर बुरे दिन देखें तो क्या होता है। इसको माल दौलत से भी देख लीजिए, इसको मोहब्बतों में देख लें। किसी को शुरू की जिंदगी में शौहर से मोहब्बत ना मिले, लेकिन वक्त के साथ शौहर को पता चल जाए कि ये क्या कैसी है, तो मोहब्बत मिल जाए तो औरतें सब भूल जाती हैं, बल्कि और खुश होती हैं कि अब तो ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर शादी के शुरू दिनों में तो दुपट्टा भी आपका उठा उठा के दूल्हा साहब पकड़े, और पर्स भी आपका पकड़े, और आपके जूते भी आपके आगे रखे, और दो चार साल के बाद उनका आपसे दिल भर जाए और फिर आपसे वो गुस्ताखी भी करें और गालियां भी दें, कैसा लगता है? अल्लाह ताला ने पहले दुख दे दिया, सजा जो देनी थी, लेकिन एक दफा जब जन्नत मिल गई उसके बाद फिर वो वहां से निकल नहीं सके। इस लफ्ज गैर मजजूज पे बहुत ज्यादा तफसीरें हुई, उलझ जाएंगे अगर मैं आपको सारी बता दूंगी तो। लेकिन अगर इसमें हम सबसे ज्यादा देखें तो सही बात वही है जो अभी तक हो गई, कि ऐसी अता है जन्नत जो कभी खत्म नहीं होगी। مجزوز کا لفظ ہے نا جز سے، جیم زال زال. جزاز کہتے ہیں عربی زبان میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، جڑ سے کاٹنا. غیر مجزوز کے لفظ کو اگر آپ اردو میں دیکھیں نا تو اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے لازوال، ایسی چیز جس کو زوال ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی آنکھ نے جنت دیکھ لی تو کبھی پھر اس سے ختم نہیں ہوگا. جنت ابدی ہے تو جہنم بھی ابدی ہے. باس نے پچھلی آیت اور اس میں کمپیریزن کر کے یہ بھی رائے دے دی کہ جنت تو ابدی آئے گا چاہے وہ رب عرب خارب سال کے بعد آئے، جب جہنم ختم ہو جائے گی الحمدللہ اور اس کے بعد سب کو جنت مل جائے گی، لیکن یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہے. اس لیے ایسی باتوں پہ تو خاموشی بہتر ہے کہ واللہ اعلم بمرادی. غیب کا معاملہ، یومنون بالغیب، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لہذا ہم اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. تو کیا پتہ چلا کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. غیر مجزوز کو آپ اردو میں ایک اور لفظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، غیر مقتوع، نہ ختم ہونے والی عطا، ایسی عطا جو کبھی ختم نہ ہو. جس کو آپ مارکیٹنگ کی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ڈیلیوری جو کبھی بھی رکے گی نہیں، ان اینڈنگ سپلائی. یہ لکھ لیجیے اس کے آگے لفظ، غیر مجزوز کے ان اینڈنگ سپلائی. جنت میں جو نعمتیں ہوں گی نا وہ ان اینڈنگ ہوں گی. گھر میں آپ کہتے ہیں چینی ختم، دودھ ختم، آلو ختم، پیاز ختم، جنت میں غیر مجزوز، کبھی نہیں ختم. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے درختوں پہ جو پھل لٹک رہے ہیں ان پہ چھلکا نہیں ہے. ایک شخص اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا، اس کا دل چاہے گا کہ فلاں درخت کا پھل میں کھاؤں، بس سوچ ہے اور اس درخت کی ایک چھوٹی سی ڈالی وہاں سے نکلے گی اور اس کے منہ کے ساتھ لگ جائے گی اور اس کے منہ کو لگے گی اور وہ جتنا پھل کھانا چاہے گا کھا لے گا. کوئی چھلکا نہیں، کوئی گودا نہیں، کوئی ہڈی نہیں، کوئی اس میں گٹھلی نہیں ہے، کوئی موٹے ہونے کا ڈر نہیں. کھا لے گا، جتنا کھا لے گا اس کا دل بھر گیا تو چھوڑے گا، تو وہ ڈالی واپس اپنی جگہ پہ جائے گی، جتنا اس نے کھایا ہوگا وہ رینوویٹ ہو جائے گا. غیر مجزوز، کیا وہ بات. کچھ لوگوں نے تو گھر میں بھی دنیا میں بھی یہی جنت بنائی بھی ہے، فریج سے کچھ ختم نہیں ہونے دینا. ایک چیز ختم ہوتی ہے بھگواتے ہیں مردوں کو بھی اور خود بھی بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بریڈ نہ ہو تو ہمارا ناشتہ ہو جائے. تو جنت کے اندر دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ختم کیا کریں. ایک دن فاقے کا بھی رکھے، ایک دن بچے کھجے کا بھی رکھے، تاکہ دنیا ہی نہ جنت بن جائے. وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہاں اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہے گا آج کل ہاتھ تنگ ہے، آج کل کاروبار فلاپ ہے. کیا ہم اس جنت کو پانے کے لیے پھر ختم ہونے والے عمل کریں؟ اب سب سے اہم نقطہ جس پہ بات کرنے لگی ہوں، غیر مجزوز عطا کو پانے کے لیے عمل کون سے کرنے پڑیں گے بتائیے جی. غیر مجزوز، چار دن کی نیکیاں اور پھر ختم، چار دن کا شوق اور پھر ختم، چار دن کا جوش اور جذبہ پھر ختم، چار دن کی قرآن کی تعلیم پھر جوش ختم، پھر بس بوجھ ہے، بس وقت ڈال رہے ہیں. ہر ایک خود سے پوچھے کیا میرا جوش ختم تو نہیں ہو گیا، کیا میرا شوق ختم تو نہیں ہو گیا، کیا میری کمٹمنٹ ختم تو نہیں ہو گئی. دیکھیں ہم خود سے سب سے زیادہ اچھا حساب لے سکتے ہیں، دوسرے کیا کرتے ہیں، کاغذوں پہ لکھتے ہیں، آپ تو خود اپنے دلوں پہ لکھ سکتے ہیں. نیکیوں کے کام جتنے شوق اور جذبے کے ساتھ کرتے رہیں گے اتنا ہی اللہ آپ کو نہ ختم ہونے والی نعمتیں جنت میں عطا کرے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ موت کو چت قبرے، چت قبرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ، تھوڑا کالا تھوڑا سفید، چت قبرے مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا، پھر فرما دیا جائے گا اہل جنت تم ہمیشہ رہو گے اور موت نہیں ہے، اور جہنم والو تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت نہیں ہے. اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اور کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے اور جنتی خوشی سے مر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب سب مریں گے نا، سب کو موت آ جائے گی، تو ملک الموت जिनको अल्लाह ताला ने ये काम दिया हुआ है वो अल्लाह सुबहान ताला के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह ताला आपने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था मैंने कर दिया। क्या क्या अब दुनिया में कोई जी रूह बाकी नहीं रहा, इंसान नहीं जी रूह, जिसमें भी रूह है, हद तक उसमें फरिश्ते भी आते हैं, आपको पता, फरिश्तों को भी मौत आएगी एक लम्हे के लिए जी, हद तक के अल्लाह के अर्श को उठाने वाले चार और उस दिन आठ जो फरिश्ते उनको भी मौत आएगी, और उस वक्त वो अर्श को एक खास जगह पे चंद लम्हों के लिए टिका देंगे, कैसे होगा, अल्लाह नोज दी बेस्ट। लेकिन ये आखिरत के मराहिल, अल्लाह ताला कहेंगे सब मर गए, सबको मार, सबको मौत आ गई जी, तो आपको तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, क्या आप अपनी भी जान लीजिए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, मलकुल मौत को भी मौत आनी है। इसको सुन के कहते हैं कि मलकुल मौत एक जोर की चीख मारेंगे, क्योंकि उनको मौत की सख्तियों का पता है कि अगर कोई जिंदा होता तो उस चीख से मर जाता। हम किस भूल में, हम कहां पड़े। तो हर एक को जाना है, कुल्लू मन अलैहा, इसी में हमारे काम देख लीजिए हम क्या करते हैं। ये है वो ना खत्म होने वाला पैगाम जो अल्लाह अपने नबी को दे रहा था। इसमें थकन नहीं हो सकती, इसमें एंडिंग कभी नहीं होती, ये चलता ही रहेगा। इसलिए अब आप देखेंगे कि अब अगली आयतों में पूरी एंड तक खिताब का रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और खूबसूरत तरीन आयतें नबी सल्लम को तसलियां देने के नाते से कुरान पाक की। कोशिश करूंगी कि इकट्ठा पढ़ के फिर एंड पे बात करें। आयत 109, फला तकुफी मिर्यते मिम्मा याबुदु हाउलाई, पस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी शक में न रहें इन लोगों के बारे में जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। यानी आप अब ये ना सोचें कि ये मुशरिक जिनकी पूजा कर रहे हैं ये ठीक ही कर रहे होंगे और शायद ये माबूद ठीक ही हों, बल्कि मा याबुदू ना, ये लोग नहीं पूजा कर रहे इल्ला कमा याबुदू आबा उहुम मिन कब्ल, मगर ऐसे ही जैसे कि इनके आबा अजदाद पूजा करते रहे हैं इससे पहले। यानी ये तो लकीर के फकीर हैं, इनकी अगर इन्होंने तौहीद नहीं सीखी ना तो इन्होंने शिर्क भी कोई नहीं सीखा, अगर इन्होंने अल्लाह का हक नहीं दिया ना तो ये बुतों का भी कोई नहीं दे रहे, बुतों को भी ये कुछ समझ के नहीं पूज रहे, ये अपने बाप दादा की अंधी तकलीद पे कर रहे हैं। और हकीकत है आज भी दुनिया में जो शिर्क है ना उसमें अक्सरियत का शिर्क सिर्फ तकलीदी शिर्क है। जैसे आज बहुत सारे मुसलमान तकलीदी मुसलमान बन चुके हैं ना, रस्मी मुसलमान, रिवाजी मुसलमान, इसी तरह बहुत सारे मुशरिक और काफिर भी तकलीदी काफिर हैं, तकलीदी मुशरिक हैं। वक्त और मुआशरे ने उनको मुशरिक बना दिया, इसलिए फरमाया कि ये सब जो कुछ कर रहे हैं आप इससे ये मत सोचिए कि ये कोई पढ़े लिखे मुशरिक हैं या अनपढ़ मुशरिक हैं, तकलीद का फंदा इन्होंने गले में डाला हुआ है जिसकी वजह से ये आम काम कर रहे हैं, लिहाजा आप इग्नोर करें, ओवरलुक करें इनको, क्योंकि वह इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम, और यकीनन हम देने वाले हैं इनको इनका हिस्सा। यानी डोंट वरी, इनका इंजाम आपके हाथ में नहीं है, हम इनको देंगे। और जरा शिद्दत तो देखिए, इन्ना नून के ऊपर शद है ना ये, फिर मुवफ्फू हम से पहले लाम जो है ना, लाम, ये लामे ताकीद कहलाती है अरबी में, एम्फेसाइज किया गया। फिर उसके बाद देखिए मुवफ्फू हम, ये जो वफ्फू के फा के ऊपर शद है ना, ये भी है शिद्दत की, कितनी ताकीदें जमा हो गई, वा फिर इन्ना फिर लाम फिर वो फा के ऊपर शद, और फिर आगे देखिए लफ्ज हम, इसकी जरूरत भी नहीं थी, ऐसे भी कहा जा सकता था और बेशक हम देने वाले हैं इनको सजा या हम देंगे सजा, हम ना भी कहा जाता, लेकिन फिर हम कहा गया। ये एक ऐसी है जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है अभी मैं पकड़ती हूं, अभी मारती हूं मैं, और एक सूरत कहती है अभी मैं तुमको मारती हूं, अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूं। तो चार ताकीदों के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं हम अलबत्ता पूरा देंगे इनको नसीब हम, इनका हिस्सा, असल नसीब तो इनका अब ये मिलने वाला है इनको। और नसीब कहते हैं मखसूस हिस्सा, नसब, गड़ा हुआ, ये जो हमारा नसीब है ना ये भी गड़ा हुआ है, उर्दू में कहते हैं ना, झंडा नसब कर दिया कि आज अब इनको बुरे हिस्से देंगे। दुनिया में तो इनके गुनाहों पे जो इनकी पकड़ थी ये बड़ी लाइट सी थी, हमने तो इनको बड़ा सॉफ्ट लिया हुआ था, असल में तो अब इनको मिलेगा। और कैसा? गैर मनकूस, बगैर कुछ कमी किए, बगैर किसी नक्स के। उर्दू में बोलते हैं लफ्ज नक्स, इसके ऑपोजिट लफ्ज क्या ऊपर गुजरा जन्नत के लिए? गैर मजजूज, वहां लाजवाल नेमते हैं और यहां गैर मनकूस, कोई कमी नहीं करेंगे इनकी सजा में, पकड़ पकड़ के बदले देंगे, गिन गिन के बदले देंगे इनकी सरकशियों को, इनकी बगावतों को, इनकी नफ्स परस्तियों को और इनकी अना परस्तियों को आज गिनेंगे। क्योंकि कुरान में पहले भी आ चुके हैं कि वमन यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा, जिस तरह अल्लाह ने गिन गिन के नेकियों के बदले देने हैं ना, इसी तरह गिन गिन के गुनाहों के बदले भी देने हैं। हम सोचते हैं कि जो गुनाह हमने हम भूल गए, अल्लाह भी भूल गया। अच्छा, वो 4 साल पहले की बात तो खत्म, आपके मेरे नाम से खत्म है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। देखिए, कभी ऐसा होता है कि आपने किसी से लेन देन किया होता है रुपए पैसे का, आपको याद रहता है कि मैंने 1,000 दिया हुआ है, 500 ऊपर थे और शायद 20 पाउंड भी थे ऊपर, कुछ अर्सा आप याद रखते हैं, कहीं आपने लिखा होता है, लिख के भी रखा हुआ, रख के भूल गए, कुछ अर्से के बाद वो आपको कहता है ये ले जी 1,000 पाउंड, 1,000 दे दिया आपको, बाकी बाद में दे दूंगा। फिर 1-2 महीने साल के बाद वो आपको ऊपर के 500 भी दे देता है। अब क्या होता है, आपके जहन से निकल जाता है कि चलो बिग अमाउंट तो उसने दे दी, 1,000 भी दे दिया, 500 भी दे दिया, वो ऊपर के 20 पाउंड जहन में नहीं रहे। 4-5 साल गुजर गए, अब उसके बाद क्या होता है, किसी दिन कोई पूछ वो पूछता है मैंने आपसे कुछ देना तो नहीं पीछे, आप कहते नहीं मेरा ख्याल है, दे दी, जहन से निकल जाती है ना। फिर हम कहते हैं चलो कहा सुना माफ, अगर मैंने देने तो आप माफ कर दें, आपने देने तो मैंने माफ कर दें। अब आपके जहनों से निकल गया, लेकिन अगर उस किसी दिन सफाई के दौरान पर्चा निकल आया कि उसने 1,000 लिया था दे दिया, 500 लिया था दे दिया, 20 पाउंड अभी उसके नाम पे, अब उस लिखे को आप झुटला सकते? क्यामत के दिन कुल्ला इंसान इन अल्जम ना हो तो आई रहो पियो नके, हर इंसान का नाम है माल उसकी गर्दन में लगा हुआ। अभी आगे पढ़ने वाले हैं सूरह बनी इसराइल के, शुरू में ही पढ़ लेंगे। हाँ, और सब चीजों को उसमें अल्लाह लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, कुल्ल इंसान नलजम ना तो आई रफी उनके, हाँ वनुफरिज लहू यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन निकालेंगे किताब यलकाहु मंशूरा, एक किताब की सूरत में जो नशर की जाएगी, और कहा जाएगा इकरा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को, कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज के दिन तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफी हो। अब वहां गैर मनकूज, लिखिए जरा मेरी मस्तियां, बल्कि मेरी खरमस्तियां अगर हैं तो अल्लाह उसके भी पूरे पूरे बदले देगा। हम क्या चाहते हैं, नेकियों के मामले में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देने के मामले में, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने, पैसे देने के मामले में अल्लाह की याददाश्त बड़ी तेज हो, गिन गिन के दे बल्कि बेहिसाब दे, और जब बात हो गुनाहों की तो हम कहते हैं अल्लाह ओवरलुक कर दे, वो भूल ही जाए, फरिश्ते तो याद ही ना रखे। तो कहा गैर मनकूस, नक्स डाले बगैर हम तुम्हें देंगे, तो इतना कड़ा हिसाब है। वो हदीस, हदीस है बेसिकली, बड़ी खूबसूरत मेरे जहन में फिर आ गई कि एक मौके पे आपने अबू जर गफारी को कहा था कि अबू जर गफारी कमर को बांध लो, क्योंकि सफर बड़ा गहरा है, सुनाऊंगी कहीं आगे जाके रेफरेंस के साथ, कश्ती मजबूत कर लो, समंदर बड़ा गहरा है, और अपना मुहासबा कर लो, क्योंकि हिसाब लेने वाली जात बड़ी बारीक बीन है। तो वो बड़ी डीप डाउन क्लीनिंग करेगा हमारे अमाल की। ऐसे ही नहीं थी आयतें जिन्होंने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया था, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इसमें तवज्जो दिलाते हैं कि अपनी फिक्र करो, गौर करो, गैर मनकूस की सूरत में तुम्हें भी तुम्हारे गलत काम, तुम्हारी गलत चीजें दिखाई जाएंगी, तो उस दिन ना कहना कि हमें पता ही नहीं चला। और इसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम के बीच में सिर्फ साइड की बात करके उसकी वजह आगे बताऊंगी। आयत 111 को देखिए, 110 को देखिएगा, वलकद आतई नमूसल किताब फख्तुलिफा फीह, और मूसा को हमने किताब दी थी, फिर उसमें इख्तलाफ पैदा कर दिए गए, یعنی اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، کون سی کتاب تھی؟ تورات ہے. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. یہ نہیں لکھا اختلاف کیا لوگوں نے، فاختلفہ مجہول پیسو وائس، بس اس میں بھی اختلاف کیے گئے. کب اختلاف ہوتے ہیں کتابوں میں؟ جب کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. دیکھیں اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مان لو عمل کر لو، کچھ نہیں مانتے، اختلاف ہو گیا نا. بس آپ دیکھیے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کل سے 9 بجے یہاں آئیں. اگر آپ سب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب 9 بجے آنے شروع ہو گئے تو کوئی اختلاف ہوگا؟ اختلاف کب ہوگا؟ آدھے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیں گے اور آدھے کہتے ہیں نہیں آ سکتے. تو جب قوم کے لوگ دین کی باتوں کتابوں کو کچھ لوگ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو دوسرے نان مسلم بھی حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون سچا کون جھوٹا. ایک تو ایسے حال ولیے میں پھرتا ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، دوسرے نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کس کو مانو کس کو نہ مانے. ٹھیک ہے، تو اختلاف جو ہے وہ کب ہوتا ہے کہ جب ہر سننے والا بات کو اپنی مرضی سے سن رہا ہوتا ہے. یہ میرے لیے نہیں حکم، بس باقیوں کے لیے. یہ رول میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوری، نہیں نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر سننے والا اپنی رائے قائم کرتا ہے، جج کرتے ہیں. کچھ لوگ سن کے کہتے ہیں اٹس اوکے، عقل کو پیچھے ڈال دو، میں نے ماننا یہ رول. کچھ اس وقت تاویلیں سوچ رہی ہوتی ہیں ان کو، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں، آئی کین ڈو دس دس دس. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے. کسی بات کو سنجیدگی سے کوئی سنتا ہے نا تو اس پہ اس کی رائے بھی مضبوط ہوتی ہے. نیک نیتی سے جب لوگ بات کو سنتے ہیں نا تو بات ماننے کی توفیق ملتی ہے. لیکن جب بد نیتی سے سنیں، گرج کے ساتھ سنیں، اگریشن کے ساتھ سنیں، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا دین کا حکم سخت آ گیا. تو ایسے نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے دین کے اندر پھر اختلاف کرتے ہیں، اور نبیوں کے سامنے بھی ایسا ہوا. تو آپ کہہ لیجئے کہ فاختلفاہ سے مراد جہاں ان کا غیر سنجیدہ ہونا ہے، اور وہ غیر سنجیدہ ہو گئے. اسی طرح اختلاف ہونے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کی رائے فرق ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ کچھ لوگ کہیں گے سردی نہیں لگ رہی، کچھ کہیں گے لگیں گی. ہر ایک کی جسمانی اور اس کے کپڑوں کی کیفیت فرق ہے نا. اسی طرح جب لوگوں کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا تو لوگوں کا اختلاف آتا ہے. کریں کیا؟ اختلافات میں کون سی چیز لوگوں کو جوڑتی ہے؟ آج صرف ایک ہی بتا سکتی ہوں، باقی پھر تربیتی سیشنز پہ. ابھی لاسٹ ویک میں نے 2-3 ویک پہلے اس پہ ایک آن لائن سیشن دیا تھا، تو اس میں 5 چیزیں بتائی تھی، لیکن آج صرف اتنی بات سمجھ لیں کیونکہ امت کی بات آ رہی ہے. مقصد کی یکسانیت، سیم گول جب ہوتا ہے نا لوگوں کا تو وہ جڑے رہتے ہیں. رائے میں اختلاف ہوگا، عمل میں اختلاف ہوگا، کوالٹی میں فرق ہوگا، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن لوگ جڑے رہیں گے کیونکہ سب کا گول ایک ہے. اور گول کو دیکھنا ہے تو بال کو دیکھ لیں. فٹ بال کا جب گیم ہو رہا ہوتا ہے تو سب لوگ ایک گول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، سب کی کارکردگی فرق ہے، لیکن وہ اینڈ تک گیم کھیلتے ہیں کیونکہ سب ایک ہی گول کے ساتھ ہے. اور اگر اس ایک ہی بال کے ساتھ ہے اور اگر کسی گراؤنڈ میں ایک کی بجائے 2 گیند ڈال دیے جائیں تو آپ کو پتا کیا ہوگا؟ کبھی فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا. آدھے لوگ ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آدھے دوسرے کے پیچھے. بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، جو نبی کی امت کا ایک خوبصورت شخص ہوتا ہے نا، اس کا گول کیا ہوتا ہے کہ میں نے جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے، اور نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی لے کے جانا ہے. یہ گول لے کے جب لوگ قرآن سنتے ہیں اور کتابیں سنتے ہیں نا تو جڑے رہتے ہیں. یہ کتاب سب سیکھنے کے مقصد میں بیٹھتے ہیں نا تو اتحاد ہوتا ہے، اپنی اصلاح اور اس کے بعد دوسروں کی مدد. اس گول پہ تعلق جڑتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھیوں سے، طالب علموں کے طالب علموں کے ساتھ، استادوں کے شاگردوں سے، شاگردوں کے استادوں سے. حسن ظن قائم رہتا ہے استادوں پہ بھی، ورنہ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، اور آپس میں ساتھیوں کے ساتھ تو بہت ہی ہوتا ہے. جب اعتراض کے ذہن سے لوگ سنتے ہیں نا تو کیڑے نکالتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ فاختلفہ فی. یہی اس دور میں ہوا، آج امت کو بڑے سے لے کے چھوٹے لیول پہ کر لیجئے، یہی ہوتا ہے. آپ اس کو گھریلو زندگی سے سمجھیے. بس اب شوہر اور بیوی کے مزاج میں بہت اختلاف ہوتا ہے، مزاج ہی نہیں ملتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیسے گھر بند ہی رہ جاتا ہے؟ بچے बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज सारी जिंदगी साथ गुजार देती हैं। क्या अब क्या करें बच्चे जो हैं, और कितने झगड़े शौहर बीवी के बिल आखिर बच्चों पे आके सॉल्व होते हैं। तो बच्चा एक कॉमन कॉज है ना, ये लोगों को जोड़ देती है। जब एक बंदा बच्चे की जगह पे लिख ले अपनी इसलाह और उम्मत का मकसद, तो फिर कभी इख्तलाफ नहीं करेगा, फिर कभी पाँव नहीं पटकेगा, कभी फिर अपने आप को दूसरी तरफ नहीं रखेगा। तो जब नबियों की दावत में इख्तलाफ हो गया, तो आज के दौर में क्यों नहीं होगा? हर दौर में लोग इख्तलाफ करेंगे, लोग एक दीनदार से कोई बात सुनेंगे तो दूसरे से आके उसकी रिकन्फर्मेशन चाहते हैं। क्या इसलिए कि मान जाए? मानते नहीं है, इसलिए करते हैं कि जरा अब हम और कुछ चार बातें सुन के उस बंदे के खिलाफ और बातें करें। जी राम, कैसे? मिसाल दे मुझे, कोई समझ नहीं आई। जी देखिए, बैठिए, जजाकला। आप देखिए कि इस बात को मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये बात पीछे हमने सूरह बकरा में की थी डिटेल से, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं कि आज के दौर में उम्मत मुख्तलिफ गिरोहों का शिकार है, फिरकों का है, तो क्या ये भी फख्तलीफा ही है? 110% यही है। देखिए, सहाबा कराम में भी इख्तलाफ राय था। आप कुरान भी तो पढ़ चुके हैं, सूरत अनफाल में, तौबा में, अबू बकर और उमर की राय में कितना इख्तलाफ होता था। मिजाज का फर्क, पर्सनैलिटी का फर्क, राय का फर्क। आप तफसीर खोल के पढ़े, मैं आपको क्या पता कितनी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं आपको अंदर से एक छोटी सी चीज बताती हूँ। आप तफसीर इब्ने अब्बास उठा के देख लें, उसमें जो राय होती है तफसीर इब्ने मसूद में वो नहीं होती। इख्तलाफ था, लेकिन इतने इख्तलाफात के बावजूद सहाबा एक क्यों थे? नबी सल्लम की जिंदगी में ही धड़ेबाजी और सट्टेबाजी और गिरोबाजी क्यों नहीं हुई? होना तो ये चाहिए था ना कि आपकी जिंदगी में अबू बकर के नाम का एक फिरका आ जाता, अबू बकरी, उमरी फिरका, उस्मानी फिरका, अलीवी फिरका। नहीं आया, वजह क्या है? ये जुमला लिख लीजिए जो बोलने लगी हूँ, शौर से लिखिएगा कि सहाबा में इख्तलाफ राय तो था, लेकिन उनकी अकीदत का मरकज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह का दीन था। सारे इख्तलाफात के बाद वो अपनी राय वापस ले लेते थे जब अल्लाह के नबी की बात सामने आ जाती थी, दलील आ जाती थी। बीसियों मिसालें इस पे मैंने कई दफा दर्स दी हैं, ऐसी जगहों पे कि जहां लोग दीन से ताल्लुक रखते थे। जब लोग नबी की बात सुन के अपनी राय को नीचे कर लेते थे तो इख्तलाफ खत्म। बात वैसे जंगे बदर के कैदियों का मसला देख लीजिए, आप रिसेंटली पढ़ के आए हैं। अबू बकर की राय क्या थी? कि इनको छोड़ दिया जाए और इनका रैंसम लेके उससे इस्लाम को फायदा दिया जाए, फिदिया लिया जाए। हजरत उमर की राय क्या थी? बिल्कुल भी नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है, इनके सर कलम किए जाए ताकि ये फितने खत्म हो जाए। अब ये दोनों की राय थी, अबू बकर भी राय देके चले गए, उमर भी देके चले गए। अल्लाह के नबी का अपना मेलान भी अबू बकर की राय के साथ था। और अबू बकर, उमर फारूक कहते हैं कि थोड़े अरसे के बाद मैं वहां से जब गुजरा तो देखा कि अबू बकर भी रो रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। उनको देखकर मैं भी रोने लगा। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी बताएं क्या बात है, मुझे वजह समझ आए ना आए, मैं आपको देख के मैं भी रोऊं, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा वही आयत नाजिल होगी जो आप पीछे पढ़ चुके कि वलौ ला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक, कि अगर ये आपके रब की तरफ से पहले से डिसाइड ना होता तो आज अल्लाह इस फैसले पे सबको पकड़ लेता। यानी उमर की राय सच थी, अबू बकर की राय और नबी सल्लम की राय दबी भी थी, तो कुरान की आयत ने फैसला कर दिया ना। बात समझ रहे हैं? जब सही हक की बात सामने आ जाती थी तो लोग रुकते थे। आज उम्मत में इख्तलाफ क्यों हुआ? हमारी अकीदतों के मरकज बदल गए। कहने को अल्लाह और उसका रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अकीदत किसी को इमाम अबू हनीफा से ज्यादा हो गई, तो किसी को इमाम शाफी से हो गई, तो किसी को इमाम मालिक से, और किसी को इमाम अहमद बिन हम्बल से हो गई। बस इतनी सी बात है, इसको समझ लें तो बात काफी समझ आ जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फख्तलिफा फी वलौ लकलिमतुन सबकत मिन रब्बिक लकुधिया बैनहुम, वही जुमला यहां भी आ गया। और अगर तय न हो चुकी होती है एक बात आपके रब की तरफ से पहले से, तो इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। ये कौन सी बात थी कि अल्लाह मोहलत देता, एकदम नहीं पकड़ता, वरना इस इख्तलाफ पे फौरन उम्मतों को पकड़ लिया जाता। वह इन्नहुम लफी शक के मिन्हु मुरीब, और अब तो ये लोग इस तौरात के बारे में उलझा देने वाले शक में मुब्तला हो गए हैं। सूरत शुरा में ये बात बड़ी डिटेल से आएगी कि हर रसूल की उम्मत अपनी इल्हामी किताब की वारिस होती है, लेकिन जब उम्मत पर जवाल आता है तो अपनी किताब के बारे में भी शकुक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं, हत्ता कि ये तक कहने लग जाते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अल्लाह के नबी को ये बात क्यों समझाई? ये बीच में हजरत मूसा के लिए एक आयत क्यों आई? क्योंकि इन्नहु लफी शक मिन्हु, अल्लाह के नबी के साथ कुछ इसी किस्म के हालात चल रहे थे कि लोग आपकी दावत पे मुसलसल शक पैदा कर रहे थे, मुरीब कुलक पैदा करने वाला शक। अल्लाह ताला का एक फैसला है, और वो क्या कि हर इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, चॉइस। ये जो लौल कलिमतुन सबक कहते हैं ना, ये क्या बात है? वो ये बात है कि हर बंदे को अल्लाह ने चॉइस दी है, हक को सीखे या ना सीखे, अमल अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन बिलाखिर लखुदिया बिन नहुम, आखिर में उनका फैसला होने वाला है। तो लिहाजा इन नहुम लफी शक के मिनहू कहकर शक की बात करके अब अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ दें, ये दीन को मुखालिफ रुख से देख रहे हैं, इसलिए इनको आपके दीन में शक है। देखिए, आप छोटी सी मिसाल समझें तो शायद बात मैं समझा पाऊं। गाड़ी में जब बैठते हैं आप रात को ड्राइविंग सीट पे, तो आप अपनी हेडलाइट्स खोलते हैं ना, क्यों खोलते हैं? ताकि आपको आगे रास्ता दिखे, और उस रोशनी में आप रास्ता देखते हैं, ठीक है? लेकिन ऑपोजिट वे से आने वाली गाड़ी या उसके ड्राइवर को वही लाइट चुभती है, वही लाइट जो आपको रास्ता दिखा रही थी वो दूसरे की आंखें क्यों चुंधिया रही है? क्योंकि वो मुखालिफ सिमत से देख रहा है। दीने इस्लाम की गाड़ी में बैठकर जब आप दीने इस्लाम के अहकाम देखते हैं ना, तो ये आपको गाइड करते हैं, और जब आप इसको ऑपोजिट रुख से देखते हैं तो ये शक पैदा करते हैं। आज इंसानियत को जो शक दिया जा रहा है ना इस्लाम और नबी सल्लम की दावत पे, वो यही है कि इस्लाम के अगेंस्ट बातें की जाती हैं, क्योंकि उनके पास खुद भी इस्लाम नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आप इनको छोड़ें, आयत 111, वइन्नकुल्लम्मलयुवफ्फियन्नहुम रब्बुका अमालहुम। वही सारी शिद्दतें इसमें भी हैं जो पीछे गुजरी, नोट कर लीजिएगा बाद में। और ए नबी, आपका रब इन सब को इनके अमाल का लाजिमन पूरे का पूरा बदला देगा। इन्नहु बिमा यामलून खबीर, क्योंकि यकीनन वो बाखबर है जो वो अमल कर रहे हैं उसको पता है। कितनी तसल्लियां अल्लाह नबी को दे रहा है। वही सारे हालात याद कर लें जो सूरत के बीच में कई बार आए। इतना दौर था जिसको अमल हुजन कह सकते हैं आप, गम का साल था। अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो बाहर वाला सहारा खत्म, हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया तो घर की ढारस देने वाली प्यारी बीवी चली गई, अल्लाह के नबी इतने दुखी थे, अल्लाह करे गम ना करें। अब आप इस वक्त इस अगली आयत को समझने के लिए अपने जहन को तैयार करें। आपने दीन की दावत कबूल की, कुरान की दावत कबूल की, चारों तरफ मुखालफतें, बातें, इल्जामात, कहीं प्रोपेगंडे, कहीं का बीवी अच्छी नहीं रही है, ये भी बहू अच्छी नहीं रही, ये वो हो गया, ये ऐसी हो गई, ये वैसी हो गई, इसने बच्चों को बर्ब कर दिया, ये कर दिया, घर को नहीं देखती, घर गंदा रहता है। अल्लाह के नबी पे इतना पीयर प्रेशर डाला गया था उस दौर में कि अल्लाह को कहना पड़ा कि आप इनकी फिक्र ना करें, हम इनको देख रहे हैं। ऐसी कि जैसे कोई कह दे कि जितने मुजरिम है भाई, डोंट वरी, हम उसकी टेक केयर कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो। जब दीन पे अमल करने पर मुखालफतें इतनी हो कि इंसान बशरी तकाजे से उसको छोड़ने का सोचने लगे कि आई कैंट गो मोर आई कैंट मूव फर्दर, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको छोड़ दो, ये मेरे ऊपर है, आप क्या करें? आयत 112, ये है पीक आयत, आज के सबक की भी नहीं पूरी सूरत की। और ये है वो आयत जिस पे अल्लाह के नबी की बात सच होती है, कई शई बतनी हूदन व खवातुहा, कि इतनी मुखालफतों के बावजूद भी आपने दीन का काम करते ही जाना है। ये चीज है जो बालों को सफेद करती है, जिम्मेदारी का एहसास। क्या? फस्तकिम कमा उमिरता, आप खड़े रहें जिस काम पे लगे हुए, आप डटे रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया। सिर्फ आप ही नहीं, वमन ताबमाक, और वो भी खड़े रहे जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, किस से? पिछली जिंदगी से, शर्क से, सहाबा कराम, आपके उम्मती, आपके लिए इशारा है कि आप और आपके ये मुट्ठी भर लोग दब खड़े रहे, हक पे खड़े रहे, क्योंकि आपने पिछली जिंदगी के गुनाहों को छोड़कर बीड़ों के छज्जे में हाथ डाल लिया, अब आप खड़े रहे। और क्या ना करें, यहां से डूज एंड डोंट्स लिखिएगा। पहले क्या कहा, फस्तकिम, ये अमर है, पहला हुक्म इस आयत का, इस्तकामत पे रहें। अब एक डोंट्स में से आ रहा है, नहीं वला तत्गव, और तुम लोग हद से तजावुज ना करो। यानी जिस दीन पर आप चल रहे हैं उस पे चलते भी रहें और दूसरों पे ज्यादती भी ना करें। ये क्या मतलब है कि अब आप दीन पर इतने रिजिड ना हो जाएं कि सबको काफिर और जहन्नमी कह दें। लेकिन फिर इन तीनों का आपको रब्त इंशाल्लाह बाद में समझ आएगा। यानी दीन के नाम पे इतने रिजिड ना हो जाओ कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो दीन के नाम पे, तुम सबको गुनाहगार, जहन्नमी और काफिर कह दो, और अपनी जात से कुर्बानी लेने की बजाय अपने घर वालों और अपने करीबियों से लेनी शुरू हो जाओ। ठीक है, और तजावुज की एक शक्ल ये भी हो सकती है कि बद दुआएं ना करने लग जाओ कि अल्लाह इन पर जल्दी अजाब ले आए ताकि जान छुटे, ये सारे मर खप जाए, मेरी मुखालफतें खत्म हो, मैं अकेली रहूं और अल्लाह अल्लाह करती रहूं, ये ना करो। इतनी मुखालफत ये करते हैं, लेकिन आप गुस्से में ना आए, हिल्म और बुर्दबारी का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, यकीनन वो तुम लोगों के सब अमाल को देख रहा है, तुम्हारे भी देख रहा है, उनके भी देख रहा है, उनकी मस्तियां भी देख रहा है और आपका जलना कुड़ना और दीन के लिए कोशिश करना, दौड़ धूप करना भी देख रहा है, उनके गुनाहों को भी गिन रहा है, आपकी नेकियों को भी गिन रहा है, उनकी नाफरमानियों पे जो पकड़ है उसको भी गिन रहा है, और अजर और सवाब जो आपको मिलना है वो भी लिख रहा है। तो लिहाजा ला तत्गव, ये दूसरी बात थी। अगली आयत में तीसरी बात है, आयत 113, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, और ना झुकाओ पैदा करना इन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। ये है खूबसूरत नुक्ता। तरकनु का लफ्ज जो है ना, रा काफ नून से रुकन, मोहब्बत से माइल होना। रकून कहते हैं किसी की मोहब्बत से उसकी तरफ माइल होना। असल में ये नफूर की जिद है। नफरा क्या पढ़ा पीछे आपने, भागना, नफरत इसी से है। जिससे नफरत होती है ना, मुझसे दूर भागते हैं। ठीक है, तो नफरत का ऑपोजिट है रकना। आप ये कह लें कि गलत काम करने वालों की तरफ मोहब्बत से ना झुको, वरना क्या होगा, सारी बातें, सारी दीनदारी आपकी पीछे रह जाएगी और होगा क्या, फतमस्सकुमन्नार, फिर आपको भी ऐसा ना हो कि कहीं आग छू जाए। आपकी सारी तबलीग की बातें, आम दिनों की नेकियां पकड़ी की पकड़ी रह जाएंगी जब आपने पीयर प्रेशर में आके लोगों की खुशी के लिए कोई गलत काम कर दिया। कितना सख्त इम्तिहान है। और अगर खुदा न खास्ता आपने ये कर लिया तो वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, फिर आपका अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं है जो आपको पकड़े, आपकी मदद करे, सुम्मा ला तुनसरून, फिर आपकी मदद ना की जाएगी। ये है वो आयत जिसने अल्लाह के नबी के बाल सफेद किए होंगे। इस पे मैंने एक आज की बात भी दी थी छोटी सी। कितनी जिम्मेदारी, आप इसको अपने ऊपर ले छोड़े, नबी सल्लम के मामले को, उनका मामला तो बड़ा क्लियर है माशाल्लाह, और वो ऐसा करने वाले नहीं थे ना, तो आप तत्कऊ में थे ना, आप तर्क नू पे थे, और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस फस्तकिम पे भी अमल कर रहे थे। ये आज मुझे और आपको कहा जा रहा है, जब दीन के काम करते हुए लोग तुम्हारे पांव उखेड़े तो फस्तकिम, जम जाओ। क्यों, देखिए जो जमता नहीं है वो दूसरों को कैसे जमाएगा। असल चीज जो है ना वो इस्तकामत है। और मैं बड़े शोर से एक जुमला बोलने लगी हूं, दीन का काम बहुत खुशी देता है बंदे को, इसमें सुकून भी मिलता है, नेकियां भी मिलती है, वक्त भी अच्छा गुजरता है, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, मोहब्बत मिल रहा है ना, सब कुछ। इस रास्ते का सिर्फ एक मसला है कि ये मुसलसल काम है, मुसलसल काम है, इसमें आप गैप नहीं ले सकते क्योंकि आजकल मेरे घर में ये खुशी का मौका है तो मुझे गैप चाहिए, और चूंकि मेरे घर में कोई गम का मौका है तो गैप चाहिए, और मेरे घर में मेहमान आए हैं तो मुझे गैप चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मैं बीमार हूं तो मुझे गैप चाहिए। ये है सिर्फ एक प्रॉब्लम। इस काम में छुट्टी नहीं मिलती। कैसे? जैसे कभी दिल को छुट्टी नहीं मिलती, दिल धड़कता ही रहता है ना। कभी दिल ने कहा कि मुझे छुट्टी दे दो अल्लाह के बंदो, दिल की छुट्टी आपकी और मेरी छुट्टी है। कायनात घूम रही है ना, सूरज को कभी छुट्टी मिली, चांद को मिली। असल ये सिर्फ ओनली एक प्रॉब्लम है जो आज समझ के जाएं। इस काम में एक ही मसला, ये मुसलसल है। मैं इस बात को कह रही हूं तो मेरे जहन में जो चीज बनती है ना, वो जहाज है। जब एक दफा जहाज उड़ जाता है ना ऊपर फिजा में चला गया, अब पायलट को छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि ना पाऊं जमीन पे ना आसमान पे। ये जो सफर है अल्लाह के दीन की खिदमत का, ये हवाओं में उड़ने का सफर है। ये आपको बहुत ऊपर उड़ाता है। आम लोग नीचे बैठे होते हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे दिखते हैं, एमलेस, पर्पसलेस। एक साथी से सुबह बात हो रही थी तो कहने लगी कि जिंदगी क्या है ना, तो मुझे उसकी बातों से थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि शायद खुश नहीं है। तो मैंने कहा आप खुश हो? कहती मैं खुश हूं, शादी हुई है, नई 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 जगह पे बच्ची आई है। तो मुझे उसकी आवाज से उदासी लगी, तो मैंने कहा आप ठीक हो ना खुश? कहती मैं खुश हूं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। तो फिर उसको याद दिलाया कि कमी अब ये है कि शादी की वजह से ये सिलसिला छूटा हुआ है आपका, वापिस आए। फौरन दावत दी, फौरन रूम में आ गई। तो याद रखिए, ये मकसद जो आपको मुझे उड़ा रहा है ना, ये हमारी इस्तकामत का एक जरिया है। जब कदम उठने लगे ना तो जिम्मेदारी ले लें। आज ये जो लोग ढीमा ढोल है ना, लोग कहते हैं हम टेस्ट नहीं देंगे, थोड़े दिन के बाद नहीं आते, हम लिखेंगे नहीं, पाबंदी नहीं कर पाते। ये जो जिम्मेदारियां लेना ना, ये बंदे को जमा देता है। मिसाल देती हूँ, बाहर आपने कभी प्लास्टिक के लिफाफे उड़ते हुए देखे होंगे ना, हल्की सी आवाज चलती है ना, कागज वो उड़ के फिर ना चलते हैं, खाली लिफाफे इधर से उधर उड़ते हैं। और अगर आप एक लिफाफे में कुछ वजन डाल दें तो क्या होगा? बैठ जाता है। ये है बस फस्त के जिम्मेदारियों का बोझ ले ले। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है ना 12 पारे पढ़ने के बाद कि अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी बेशी है, तो जिम्मेदारियां ले। पहले स्टूडेंट बनने की जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर स्टाफ बने, फिर देखिए आप कैसे निखरते हैं। हम जब लीनियट होते हैं, लाइट लेते हैं, यानी एक मैं दुख के साथ बात कहूंगी कि आजकल मैं फील कर रही हूं हमारी क्लास का एक बड़ा हिस्सा और यंग बच्चियों का, वो लेट आ रहा है। मेरे लिए ये सदमे से कम नहीं है, और मुझे वजह भी पता है। ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना तो बात नहीं बनेगी। जैसे आप देखिए कि बारिश होती है, पत्थर पे भी बरस रही है तो बारिश है, प्लास्टिक पे भी है तो बारिश है, उसने बरसना है। कोई एक कतरा भी उसका जज्ब करता है कि नहीं करता, लेकिन बारिश बरस रही है। दीन का काम इसी तरह से होता है कि ये मुसलसल काम है। और यही चीज हमारे घर वालों को ऑफेंड करती है, ये भी लिख लें, सारी मुखालफत इसी वजह से हमारी, अगर है तो खुदा ना खास्ता, कि क्या मतलब है और कब तक, आखिर कब तक? कभी कोई धमकी, कभी डांट, कभी कोई मात, कोई कुछ, क्योंकि अब ये खत्म कब होगा, ये कब खत्म होना है सिलसिला? ये मेरे साथ भी नहीं खत्म होगा, ये चलता ही रहेगा। एक मकसद मिल गया तो अब छोड़ दे। अभी तो सीधे सीधे लाइन पे आने शुरू हुए हैं, तो क्या अब लाइन छोड़ दें? ये तो ऐसे जैसे कोई मेडिकल के तीसरे साल में हो तो अब उसकी दादी के बेटा और कितना पढ़ोगे, छोड़ दो अब तो। कहेगा अम्मा अभी तो पढ़ना शुरू हुआ, अभी तो आगे 5-6 साल और पढ़े हैं। ये चीज मुश्किल है। जितना दीन को जिम्मेदारी के साथ करेंगे ना, ये आप अपने आप से खुद पूछें, हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट मौजूद है ना, शुरू से लेके अब तक कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने वालों की, कितने और आ रहे हैं, तो कितने बीच में से इधर उधर हो जाते हैं ना, शुरू के टेस्ट हैं तो अब नहीं है। वजह यह है कि लीनियट हो गए, बच्चा हो गया तो लीनियट हो गए, शादी हो गई तो लीनियट हो गए। और मैं कहती हूं वो वक्त जिस वक्त अल्लाह ने हमें कोई ऑनर देनी होती है ना, इब्राहिम वाली, उस वक्त हम छुट्टी ले चुके होते हैं, एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, दरकार है। कभी होता है खुशी छुट्टी के नाम पे हम रोते हैं, नहीं छुट्टी नहीं देनी, और अब मंडे की छुट्टी सुन के हम खुश हो गए हैं कि चलो आजकल तो वाकई छुट्टी की बड़ी जरूरत है हमें। देखिए हम इंसान है, ये नहीं होगा कि हमारी जिंदगी जो है वो एक ही जैसी रहेगी। मौसम भी तो एक जैसे नहीं रहते ना, कभी कभी इन दरख्तों पे लगता है कि कभी एक भी पत्ता नहीं था जितने आजकल है, और कुछ महीनों के बाद ये सारे सुर्ख होने वाले हैं। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो हम इंसान है, हम ये नहीं कह सकते कि हर हाल में इंसान एक ही दर्जे का काम करेगा, लेकिन जो जरूरत है वो क्या है, फस्तकिन, छोड़ना नहीं, रास्ते से नहीं हटना, क्योंकि जब हार मान ली तो फिर लोग आपको हरा देंगे, फिर आपने जब एग्जिट ले लिया तो कौन आपको मंजिल पे पहुंचाए। इसलिए ये लफ्ज बहुत जबरदस्त है, फस्तकिम कमा उमिरता। कहाँ हुक्म दिया अल्लाह ने कि हुक्म, यहाँ हुक्म है कह नबी, यहाँ देखिए शुरू में बात है वाहिद की, फस्तकिम उमिरता, ये दोनों वाहिद है, सिंगुलर है, लेकिन साथ ही वला तत्गऊ में आ गई जमा, क्योंकि वह मन ताब अमाक, अल्लाह ताला कहते इस्तकामत रखो। अब ये इस्तकामत का हुक्म कहाँ मिलता है, तो एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत सुफियान आए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लम, आज मुझे सिर्फ एक नसीहत करें, शॉर्ट टू द पॉइंट, जिसको आज की जुबान में आप कहें, ऐसी नसीहत कर दें कि इसके बाद मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी होता है ना फेयरवेल एडवाइस, कोई मुझे आप कहते हैं कि नोट लिख दें, कुछ भी कर दें, तो आपने फरमाया क्या कहो, क्या कहा होगा, कुल आमंतु बिल्ला सुम मस्तकिम, दो लफ्ज है, कह दो कि ईमान ले आया, मान गए कि ये सब अल्लाह का है, तो फिर जम जाओ, बस इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। कहा अगर इस एक बात पे तुमने अमल कर लिया तो तुम जन्नत में जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं पूरे कुरान मजीद में रसूल करीम पर इस आयत से ज्यादा सख्त और शाक कोई आयत नहीं गुजरी। बहुत जिम्मेदारी है भाई, तुम्हें अपॉइंट किया तुम नहीं जा सकते, नो रेजिग्नेशन, कोई रिजाइन नहीं कबूल होगा आपका, नो छुट्टी, फाड़ दो इस पर्ची का एप्लीकेशन को, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इस्तकामत की बात है। दीन के कामों में इस्तकामत इख्तियार किए बगैर बात बनती कोई नहीं है, वो कैसे दूसरे को जमाएगा जो खुद नहीं जमता। आज हम मुसलमानों में इस्तकामत नहीं रही, इसलिए हम ठोकरें खा रहे हैं लोगों से। आज भी अगर हम ठुके होते हैं ना दीवार के कील की तरह, तो हम में से एक एक 10 10 15 15 नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम कर सकता था, क्योंकि हम आज खुद नहीं रहे, हम ऐसे नहीं है। और जो आपको रिवायत सुफियान बिन अब्दुल्ला की सुनाई है, ये सही मुस्लिम में है, आप खुद जाके उसकी डिटेल पढ़ लीजिए। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स उस्मान हाजिर हुए, कहने लगे मुझे कोई वसीयत कीजिए, बस एक वसीयत कीजिए। पहले दौर में लोग इस एडवाइस लेते थे। आपने फरमाया फरमाया अलैका बितक्वल्लाही, अल्लाह का तकवा थाम लो, वाल इस्तकामती, और इस्तकामत को भी पकड़ लो, इत्तबी वला तबतदी। पूरी बात क्या है, खौफे खुदा को लाजिम पकड़ लो, इस्तकामत को, जिसका तरीका यह है के दीन के मामले में शरीयत का इत्तबा करो और अपनी तरफ से कोई बिदअत इजाद ना करो। और कहने वालों ने कहा इस दुनिया में सबसे दुश्वार तरीन काम इस्तकामत है। हम बोर होने लगते हैं, हम थकने लगते हैं, क्योंकि एंजॉय जो नहीं करते, किसी के कहने पे तो दरख्त कभी नहीं खड़े होंगे ना, लिहाजा इसकी फिक्र कीजिए। गर्मी, सर्दी, नरमी, दुश्मनी, मोहब्बत, प्यार, हर हाल में मुझे तो जाना है, मामला फहमी ढूंढे मिलेगी। और जितना ज्यादा आप देखेंगे कि दीन के आप काम करेंगे ना, उतनी आपकी खराबियां आपको खुद दिखेंगी, और जितनी खराबियां दिखेंगी ना उतना आप निखरेंगे। आप टेस्ट देंगे तो पता चलेगा ना कि आपको तर्जुमा याद हुआ कि नहीं। 0 मिल जाए 25 में से क्या फर्क पड़ता है, 0 और 25 में कोई फर्क नहीं है, आपको पता लग गया कि मुझे कितना याद है, 10 नंबर मिल गए, दीजिए टेस्ट, खाली दीजिए, नहीं आता लिखना असाइनमेंट में, लिखे लंबे लंबे किस्से कहानियां, जब एंड पे देखेंगे कोई नंबर ही नहीं मिले तो आपको समझ आ जाएगी गलती के। तो जितना काम करते हैं ना उतनी गलतियां करते हैं, उतना सीखते हैं और उतनी इस्तकामत आती है। लोग अपनी अपनी सलाहियतों से इतना नहीं सीखते जितना अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसके लिए एक इंसान देखे, और आप देखिए अल्लाह के नबी ने इस आयत पे अमल किया तो कैसे किया। आपकी जिंदगी में खुशियां आई आई ना, गम आए, गर्मियां भी आई, सर्दियां भी आई, सफर भी आए, रमजान भी आए, चलते ही रहे, चलते चलता ही रहे, वो सारे किस्से तबूक वाले याद कर ले पीछे से। बेटी बीमार है उसको छोड़ के बदर के लिए गए, बेटी बीमार है दूसरी तबूक पे चले गए, दोनों मर गई आपके पीछे से, दोनों फौत हुई आपके बाद, और आपने आने के बाद उनकी कब्रों पे आके दुआ की होगी तो की होगी। हम होते तो वहां से आते रोते हुए धोते हुए और कहते कि क्या करें, होता ही नहीं है, वो नहीं है। अल्लाह के नबी का नवासा बीमार है और बेटी पैगाम दे रही है कि अब्बा जी आ जाएं, बच्चा बीमार है, बेटा भी काम में हो। एक मैसेज दूसरा और आखिरी मैसेज पे जब आए तो बच्चे का इंतकाल हो चुका था। हजरत सफिया से शादी आपकी जंग के दौरान हुई, कैन यू बिलीव। हजरत जैनब के साथ आपका निकाह जो हुआ, यानी हबशा से जो आ रही थी, सफर के दौरान हुआ। यानी कभी सीरत पढ़ के मैं कहती हूं अपने दामन में झांके तो निरी शर्मिंदगी। हमने पढ़ी हुई कहानियां दूसरों की, इसलिए हम अपने आप को बहुत फन्ने हाँ समझते हैं जी, बड़े नेक हो गए हैं, और दूसरों का भी जीना हराम किया हुआ हमने, चार लफ्ज नहीं अभी पढ़े, और दूसरों के बीच में हम चौधरी बने हुए हैं। इसलिए अपनी फिक्र करें। अल्लाह अकबर, ये नेकियों का बाग इस्तकामत से लगता है। एक पौधा लगाएं फिर दूसरा निकाल दें, फिर जाके कुछ दिन बाद दूसरा ले आए पहला निकाल दें। एक पौधे को इतना देख रहे हैं कि दूसरे से गाफिल हो गए, तो क्या क्यारी बनेगी? पहली नेकियों की हिफाजत दूसरी नेकियां लेती है। और ये कुरान का सफर बड़ा खूबसूरत है, कई ऐसी छोटी छोटी क्लासेस हैं जो आज तक नहीं छोड़ी, इस सोच के साथ कि नहीं ये हमारे बीच थे, इनको नहीं छोड़ना, इससे ही तो कुछ थोड़ा सा काम करने का रास्ता हमवार किया। कई साथी ऐसे हैं हमारे साथ कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मैं यकीन से कह सकती हूँ कि दुनिया की बहुत सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत है। वो आज कोई काम ना भी करें ना तो मुझे कभी उन पर गिला नहीं आता, वल्लाही मुझे पता ऐसा है कोई नहीं कि ना करे, लेकिन अपेरेंटली कभी लगे कि कोई मजबूरियों में या डी ट्रैक हो गए या क्या, मैं कहती हूँ ये उस वक्त में काम कर गए अपने हिस्से का कि जिसको अल्लाह ने कह दिया कि आज के बाद तुम कुछ भी ना करो तो खैर है। रदी अल्लाह अन्हुम व रदुवन, ऐसे मुकाम आते हैं इस रास्ते में, और वही बचता है जो इस्तकामत पे होता है। हवाएं चलती है ना फितनों की, आंधियों की, तो लोग एकदम बिखरते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं भक की तरह उड़ जाते हैं, पीछे असल चार छह रह जाते हैं। अब तक अल्लाह के नबी के इंतकाल की खबर पे कबीलों के कबीले इस्लाम से फिर गए थे। ओहद का मंजर तो आपने पढ़ ही लिया सूरह आले इमरान में, कि सिर्फ खबर फैली थी कि अल्लाह के नबी फौत हो गए, अभी खबर तस्दीक नहीं हुई, तो लोग तीन ग्रहों में बट गए थे, और एक उसमें वो था जिसने कहा अच्छा नहीं रहे, चलो फिर आओ अबू सुफियान से पुरानी मोहब्बतें गाड़ के उसके साथ पनाह ले लेते हैं। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होना, अल्लाह के नबी तो रहे ही नहीं, लेकिन एक छोटा सा गिरोह था जो उठा के नबी नहीं रहे तो क्या हुआ, हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे जो उसपे। मैं अक्सर सोचती हूँ, कई आप लोग भी सोचते होंगे, हर एक सोचता है, आप अपने बच्चों के लिए सोचते होंगे, पता नहीं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होना, सोचते हैं कि नहीं सोचते? पता नहीं इन्होंने बाद में नमाजें भी पढ़नी है कि नहीं, पता नहीं इनका कुरान से कोई ताल्लुक होगा भी कि नहीं, पता नहीं इन्होंने फजर उठ के पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। हर इंसान को काम होता है, मैं अपने तौर पे आप साथियों का सोचती रहती हूँ कि अगर आज मुझे कुछ हो तो कितने लोग हैं जो शायद हमें छोड़ के चले जाएंगे, और कोई भी ना ऐसा अल्लाह करे हमें छोड़ता, कोई छोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीन नहीं छोड़ना। लेकिन याद रखिए जैसे शादी होती है ना, तो एक मर्द के साथ निभा होता है, उसी के साथ खैर होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो कहते हैं नहीं हम आपके साथ नहीं, हम किसी और के साथ चले जाएंगे, हम दीन का ही काम करेंगे ना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो कहीं भी नहीं गए, दूसरों ने उनको कबूल ही नहीं किया कि जब आप इधर धोखा दे सकते हैं तो उधर क्या करेंगे आप। तो फिर एक दर का बंदे में ही बात है, जब इस्तकामत में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अगली बात ला तत्गाव तो बिल्कुल ही नहीं होगी। झुकाव होता ही तब है जब मुखालफत नहीं होती, जब इंसान, यानी ये आप देखें आप तीनों के बीच में एरो डाल के रब कर लें, बात तो पहले बड़ी लंबी हो गई है लेकिन जरूरी है, कि जब आप एक चीज के ऊपर इस्तकामत से जम जाते हैं ना तो ला तत्गाव वाली कैफियत नहीं आती। आप सोचे एक शख्स के गले में रस्सी है और उस रस्सी के अंदर को जब वो खींचता है, एक मिसाल है कि वहां रस्सी बंधी हुई है और वो यहां तक है, उस रस्सी के साथ बंधे रहना इस्तकामत है। मैं उस रस्सी को खींच के इधर आऊंगी तो डर है ना कि रस्सी खुल जाएगी, किसी बकरी को सोच ले, तत्गऊ क्या होता है कि बंदे को जो जिम्मेदारियां मिलती है ना उससे जान छुड़ानी। आमतौर पे नहीं लोग कहते कि छोड़ना है, अमल से बताते हैं सरकशी की वजह से। तकाजे नहीं पूरे करना चाहते, लाइबिलिटीज नहीं पूरी करते। जैसे मैं अपने ऊपर लूं कि अगर मैं आपको पढ़ाने बैठी हूं और मैं अगर इस पढ़ाने के सारे हक नहीं अदा करूंगी तो मुझे जितना मर्जी शौक हो कि मैं आपकी टीचर बनी रहूं, लेकिन मैं सरकशी हूं, मेरे से जिम्मेदारियां निभ नहीं रही। आखिर क्या होगा, एक दिन वो या तो कील उखड़ जाएगा जिसको लेके आप उस रस्सी को तोड़ा लेंगे, या कोई आके आपकी जान से वो फंदा उठा देगा कि आप निकाल दें इसको, आपको मुश्किल में डाला हुआ, इसको निकालें। तो बस दफा दीन का काम बोझ लगने लगे तो उस वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसकी जिम्मेदारियां मुझसे पूरी करवा। और फिर आप देखेंगे कि आप अब ये सब कुछ आप किस नियत से सुन रहे हैं, इस कोर्स की कमिटमेंट, आपकी अटेंडेंस, आपकी इस्तकामत है। तत्गऊ छुट्टी है आपकी, यूनिफॉर्म ना पहनना आपकी तुगयानी है, वक्त पे ना आना आपकी तुगयानी है। मैं बहुत ही दर्द के साथ ये बातें कह रही हूं, दुख के साथ कह रही हूं, यकीन करें। अगर आप ग्रुपिंग में नहीं आते ये तत्गऊ है। आप जो नहीं कर रहे ना इस कोर्स में, जो पहले दिन से आपने फॉर्म पे फिल किया हुआ है, तो ये आपकी तुगयानी है। और इसका लाजमी नतीजा ला तरकनू, तीसरे मरजले पर आता है, फिर झुकाव होने लगता है। देखिए जब उधर से रस्सी टूटेगी तो बकरी इधर ही गिरेगी ना। जब इस्तकामत की रस्सी छूटती है तो ज्ञानी की वजह से, तो इंसान जरूर दूसरी तरफ झुकता है, फिर वापस उधर जाने लगता है जिधर से आता है, फिर वही मोहब्बतें, वही तरीके, वही सब कुछ अच्छा लगता है। और इस तरह की बातें लोग करते हैं तो ये एक दिन में नहीं होता। फिर दोबारा जहां से चले थे वहीं चल पड़ो। एक मुफस्सिर है कतादा, कहते हैं कि मुराद क्या है कि जालिमों से दोस्ती ना करो और इनका कहना ना मानो, जालिमों की तरफ मेलान ना रखो। इसी तरह नाम लिए बगैर सब आपको अकवाल सुना रही हूं। एक तफसीर इसकी की गई कि इनके आमाल और अफाल को पसंद ना किया करो। इमाम सद्दी कहते हैं जालिमों से मुदाहनत ना करो, यानी इनके बुरे आमाल पर खामोशी और रजा का इजहार ना करो कि चलो आप सहेलियां हैं, दोस्त हैं, ये गलत काम कह रही हैं तो कर लेती हूं, क्या फर्क पड़ता है। इकरमा कहते हैं जालिमों की सोहबत में ना बैठो। गाजी बिजावी, ये मुफस्सर ही मुफस्सर है, कहते हैं कि शक्लो सूरत और रहन सहन में इनके तरीकों का इत्तबा ना करो, वरना ये क्या होगा, तत्गऊ और तरकनू। ये सब इसी की तफसीर है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह अपना बना ले। देखिए जब तक शादी नहीं हुई होती ना किसी लड़की की, तो माँ बाप को और फिक्र होते हैं अच्छे घर से रिश्ता आ जाए, लेकिन जब शादी हो जाए और लड़की बिगड़ी दिखे तो फिर वो हाथ मलते हैं। अल्लाह इस घर को बना रखना। इस्तकामत क्या है कि इस दीन के घर को बना रखो। अब एक रब से जुड़ गए हो, अब नहीं कहीं और जाना। इससे पहले तो बहुत मुंह मारियां की, तो ज्ञानियां भी थी और सरकशियां भी थी। अब जब ये सारे हालात ऐसे असाब शिकन हालात हो, खड़े रहना मुश्किल हो, और इस्तकामत का ताल्लुक अकीदे में भी है, इबादत में भी है, मामलात और अखलाकियात, मरते दम तक अल्लाह की हदों पे रहो, वही दीन आगे पहुंचाना है जो असल दीन है। दिल में शक का है तौज़ु बिल्लाह पढ़ो। अब करो क्या, अब अगला जवाब है हमारे लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो स्ट्रेस लेवल जो बंदे का देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर ऊपर जाती है ना सुई, जब दिल धक धक करने लगता है तो एकदम रिलैक्स करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मुझे पता है आपके ऊपर मुश्किल हालात हैं, आपके ऊपर मुखालफतें, आजमाइशें हैं, घर वाले, बाहर वाले, इधर के उधर के जालिम लोग आपको अपनी तरफ झुका रहे हैं, तो अब करो क्या, वाकई में सलाता नमाजें पढ़ो, ताल्लुक बिल्ला मजबूत करो। आयत 114 में अब हल दिया गया, कैसे इस्तकामत हो, कैसे तुगयानियों से बचो और कैसे तरकनू पे ना आओ। वाकई में सलाह, नमाज कायम करो। तरफ ये नहारी वजुलफम मिनल्लैल, दिन के दोनों सिरों पर भी और रात की कुछ घड़ियों में। क्या पता चला कि इस्तकामत लाने वाली चीजों में पहली चीज नमाज है। जो सिस्टर्स कल आई थी शाम के हलके में, उन्होंने सुना भी होगा, फायदा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन, कि कैसे नमाज बंदे को बांध के रख देती है। दिल नहीं जम रहा कुरान पे, दीन पे, तो नमाजें और पढ़ो, नफिल पढ़ो, अल्लाह से तौफीक मांगो, दुआएं करो। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहां नमाज में जो पांच वक्त है ना, इसको भी थोड़ा सा मुफस्सरीन ने छेड़ा, हम देख लेते हैं कैसे। अब देखिए, तरफ नहार, दिन के दो किनारों पर नमाजें, ये कौन सी होती हैं? जिस वक्त दिन के किनारे हैं, फजर और असर। एक में दिन शुरू हो रहा होता है और असर के वक्त दिन ढलना शुरू हो जाता है। रात के वक्त जुलफ मिन लैल में, रात में मगरिब और इशा की नमाजें हैं, ठीक है। दिन के दोनों सिरों पर फजर और असर, रात में मगरिब और इशा। लेकिन ये जहन में रखिए कि ये सूरत मक्की है और पांच नमाजों का सिस्टम मेराज के बाद दिया गया था, तो अभी पांच नमाजें आई नहीं थी, इसलिए आप सोचेंगे कि जोहर तो इसमें है ही नहीं है। इससे पहले मक्की दौर में तकरीबन 10.5 साल तक नमाजों के बारे में इसी किस्म के अहकाम थे, कभी नफिल नमाजों का हुक्म, कभी किनारों का, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। दूसरी बात, यहां गौर से अगर आप देखें, अकीम वाहिद का सीगा है, ठीक है, नबी को भी हुक्म है। अभी अकीम उस सलात की बात नहीं है कि यहां अल्लाह के नबी को वाहिद में कि अभी आपको हुक्म दिया जा रहा है, दूसरों को नहीं। और दूसरा काम क्या करो इस्तकामत के लिए, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, यकीनन नेकियां बदियों को दूर कर देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये याद दहानी है याद रखने वालों के लिए। ये दूसरा काम करो इस्तकामत के लिए। मुखालिफों को अपना मुआविन बनाने के लिए उनके बुरे रवैयों के जवाब में भले रवैये रखो, ये मतलब है, समझ आए। जब लोग आपके मुखालिफ है, आपके दीन के दुश्मन है, तो आप क्या करो, उनको आप दिन रात बातें सुनाओ? नहीं, उनके साथ हसनात करो, उनको तोहफे भेजो, उनको खाने पका पका के भेजो, उनको आई लव यू के कार्ड भेजो, उनके साथ अच्छा मामला रखो। हम क्या करते हैं, कुंद छुरियां कठोर, चाहे उनके सामने नहीं, अकेले में दूसरों के सामने उनकी बुराई करते हैं, पहुंच जाती है उधर। देखिए, इस अखलाक के बगैर बात बनती नहीं। आज यहां आने से पहले यही टॉपिक पढ़ा के आई हूं हौसलों वालों को कि हुस्न अखलाक, दीन के काम करने के लिए अखलाक से बेहतर कोई हथियार ही नहीं है। किल विद काइंडनेस, हम कहते हैं दूसरों के सर पांव पे रख के कदम, हम अपना कद लंबा कर लें। अल्लाह के नबी ने हसनात की थी सय्यात के बदले में, जो कूड़ा फेंकती थी औरत, आप उसके घर की सफाई करते थे। एक मौके पे एक औरत घर से सामान उठा के सर पे पोटली रख के कहीं जा रही है, मक्की दौर के आगाज की बातें। अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा जी मैं आपकी मदद कर दूं? कहा कर दो। आपने उसका पोटला सर पे रख लिया और वो अम्मा गालियां दे रही है, बातें कर रही है, कैसा शख्स आ गया हमारे शहर में, हमारा जीना दोभर कर दिया, हमारे बड़ों की बातों को बुरा कहता है। नबी सल्लम सुनते रहे सुनते रहे। अल्लाह के नबी के दुख से शहर छोड़ के जा रही थी ना, तो वहां तक पहुंचे, उसकी कड़वी कुसैली सुनते रहे। कहा बेटा तू कितना अच्छा बच्चा है, तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तू मोहम्मद है? कौन सा मोहम्मद? कहा अम्मा मैं वही हूँ जिसकी बातें सारे रास्ते आप करती रही हैं। तू वो है जिसके बारे में बात कर रही थी और तू मेरा सामान उठा रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और औरत मुसलमान हो गई। ये है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। हम कितनी जल्दी हार जाते हैं। मैं कहती हूँ कैसे जुरत करते हैं हम अपने रिश्तेदारों के बारे में एक गलत लफ्ज बोलने की, है जुरत? दिल चाह रहा वक्त तो नहीं है, लेकिन छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो है। वीडियो में बेसिकली तस्वीर है सिर्फ, लेकिन आवाज सुनवा देती हूँ। सुना दे इनको भी कि इस्लाम कैसे फैलता है। हम लोग तो कहते हैं ना कि हम सारे काम करें, हम वहां सीरम चला सकती हैं आप या मैं इधर से चला लूँ? मुझे तो सीधा सीधा ही अच्छा लगता है। तेरी फोन से चलाऊ? चलिए, छोटी सी है, यानी मैं आपको अपने लफ्जों में पहले बताती हूँ उर्दू में, फिर आप इंग्लिश में सुनेंगे। बेसिकली एक शख्स है रोमानिया में, वो आजकल दावा का काम कर रहा है, तो उससे एक इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू ले रहा है कि आप ये सारा सफर, एक मिनट जी, ये एक शख्स है जो इस वक्त बहुत दावा का काम कर रहा है, तो लोग उससे पूछ रहे हैं कि आप ये दावा का काम कैसे कर रहे हैं। तो वो अपनी अब कहानी सुनाता है कि मैं कहाँ गया था, बल्कि सुनिए, तो फिर ना समझ आई तो मैं उर्दू में बोल दूंगी कुछ।
I was traveling long time back in Turkey as a tourist.
Samajara?
And the night, by mistake, I missed my way. I stop somebody in the street and I tell him, can you tell me where is this address? I show him the brochure of the hotel and he said, there is not any hotel in this village. But please, I want you to be my guest. I go to his home, it was dark. I don't see, only the front door was open and I saw inside 5 children and 2 old ladies. I saw the place is safety and we go inside. I was with my wife. That man, he invited us for a very simple dinner. The way how he treats us, we feel very comfortable. And then he said, you sleep in this place, we have the other place. Next day, when I wake up, I search for him to tell him thank you very much and to continue my journey. When I went out from the door, it was daytime now, I can see. There was not other room. That room was over his house. And this brother with his 5 children, with his mother and his wife, he was sleeping under the tree. And it was cold, it was freezing. I was shocked. I go to him and I tell him, are you crazy? Why you do that? He looked to my face and he was smiling and he said to me, no, I'm not crazy, but you are a traveler. And I have to give you whatever I have because I am a Muslim. When that brother, he said, I am a Muslim, his face was shining like a nar. And I was very much shocked. My wife, she started to cry. I said, look, what do you know about Islam and how this guy is treating us? He said, I don't have very much knowledge about Islam, but you can read the book of Quran and you can read the Sunnah and then you will know more about Islam. Immediately, I go to the library, I buy Quran, I buy Hadith, and I start to read. I read continuously for about 2 months. After 2 months, my heart was opening, and I say, Shadu Allah, Allah, Shadu Muhammad, and I became Muslim on 17 January, 1993. Alhamdulillah. وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. Regarding to your question, from the first beginning of my Muslim life, I started Dawah. I was traveling to more than 112 countries carrying the logo of Islam. More than 1,000 people became Muslim. When I saw these activities is giving some good result, I decided to do something for Islam in Romania. In our area, we have more than 80,000 Muslims. I decided to build an Islamic center to be a house of teaching people about Sunnah of Prophet Muhammad and Quran. We start this project almost to be completed. We just have a little bit to finish it. My dream is to make this kind of activity all over the world. My target is to let the people to know Islam. Because if somebody read Quran with his open heart, definitely he will change his idea about Islam and he will follow the words of Prophet Muhammad. This is my dream. I am working on it. And I wish we will finish our Islamic center in Romania and our activity will go on and on because we have a big responsibility. God give us a gift to be a Muslims. We have to spread this gift all over the
world. Basically, he was a non-Muslim. He was somewhere in Turkey and for some reason, इसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी तो वहां एक शख्स था तो उसको कहा कि यहां कोई होटल है मैं जहां रात बसर करूं तो उसने कहा कि इस टाउन में तो कोई होटल नहीं है तो मेरे साथ चलो कहता कि वो मुझे अपने घर ले गया तो खतरा भी था इसको कि जाहिर है कि पता नहीं कौन है लेकिन कहता मैंने देखा तो वहां 5 बच्चे वो खुद और 2 औरतें थी तो मैंने कहा कि सिक्योर है मैं इसके साथ वहां अंदर गया इसकी बीवी भी साथ थी कहता उसने हमें सिंपल सा डिनर दिया जो हमने बहुत एंजॉय किया उसके बाद कहने लगा कि तुम दोनों इधर आराम करो हमारे पास और जगह है हम वहां सोएंगे इसने कहा ठीक है वो चले गए इसने अपनी बीवी के साथ उनके घर में रात बसर की जब सुबह हुई तो कहता कि मैं दरवाजा खोल के बाहर गया लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो एक ही कमरे का उसका घर था मैं समझ रहा था कि वो दूसरे कमरे में है लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो दरख्त के नीचे सारी रात उसने अपने 5 बच्चों और 2 औरतों के साथ गुजारी और बहुत ठंड थी तो मैंने उसको बोला कि तुमने क्या किया यू क्रेजी तो उसने कहा नहीं क्रेजी नहीं तुम मुसाफिर थे और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था, तो मैं ये करता हूँ क्योंकि हम मुसलमान हैं। और उस वक्त उसका चेहरा ईमान से चमक रहा था, कहता है कि मेरी बीवी रोने लग गई, किसने क्या किया। लेकिन वहां से फिर इसको लगा कि इस्लाम कैसा दीन है कि ये खुद रात बाहर गुजार के मेरे साथ इस तरह उसने मामला किया। तो उसके बाद कहता है मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने वहां से कुरान लिया, 2 महीने मुसलसल मैं उसको पढ़ता रहा, और जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल खुल गया और मैंने शहादा ली कि मैं मुसलमान हो गया। और उसके बाद कहता है कि मैंने फिर अपनी जिंदगी का मकसद दावा को बनाया, 1,000 लोगों को कहता है कि अभी तक जैसे मेरे हाथ से वो मुसलमान हो चुके हैं। फिर रोमेनिया में इन्होंने जाके एक सेंटर बनाया, 80,000 मुस्लिम है वहां। हम क्या बातें करते हैं, अभी तो हम अपने आंसुओं से नहीं निकले, हमने बड़े काम कहाँ करने हैं। तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत किल विद काइंडनेस, अच्छे किरदार अच्छे अखलाक को कोई बीट नहीं कर सकता, ये क्वालिटी कंट्रोल है। आपके साथ रहने वाले आपके अंदर कोई नक्स निकाल ही ना सके, उनको नजर आ रहा है लेकिन आप में नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका दिल साफ हो जाएगा। असल ये कुर्बानी देनी पड़ती है, वो नहीं हम दे पाते। देखिए कभी ऐसा होगा कि ईद बकर है तो आप बकरा कुर्बान हमसाय का पकड़े और कर दे, अपने बकरे कुर्बान करते हैं ना। हमें अगर इस दीन को अपने घरों और अपने खानदानों में लाना है ना, तो खुद को कुर्बान करें। बहरहाल ज़ालिका ज़िक्रा लिल-ज़ाकिरीन, ये दूसरा काम था। अब तीसरा काम आयत 115 क्विकली इसको करेंगे, फिर आगे बाद में जरूरत हुई तो बात कर लेंगे। अगला करने का काम मुखालफतों के जवाब में वसबिर और सबर कीजिए, जमे रहे। फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, सबर कीजिए, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। ये कौन सा सबर है? सबर अलत्वात। सबर की 3 मारूफ किस्में आपको शुरू में लिखाई थी ना, अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसको करते रहिए, और जिससे रोका है उससे रुकिए। फिर कहीं सबर अनिल इत्तला आता है कि दुखों तकलीफों पे सबर करें। यहां सबर से मुराद दीन हक के रास्ते की मुश्किलों का सबर है, जिसको सूरत असर में कहा गया वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सबर। ये सबर लाजिम है। इन्नल्लाह ला युदी अजरल मुहसिनीन, इसको सुन के कितना सुकून मिला कि अल्लाह अजर जाया नहीं करता। अगर आज आपकी मुखालफत है कोई बात नहीं, कल मवाफकत में बदलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हैरत का इजहार करते हैं कि इतनी बड़ी दौलत को लोग छोड़ देते हैं। आयत 116 फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि तुमसे पहले की कौमों में हक के ऐसे अलम बरदार होते, उलू बकीयतिन अकल वाले समझ वाले क्या करते, यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द, जो अपनी अपनी कौमों के लोगों को रोकते जमीन में फसाद मचाने से। हाँ मगर इल्ला कलीलम मिम्मन अंजैना मिनहुम, मगर बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जिन्हें हमने इनमें से बचा लिया। हुआ क्या, वत्तबल्लज़ीन ज़लमू मा उत्रिफू फी, और पीछे पड़े रहे वो ज़ालिम इन ऐशो आराम की चीजों में जो इनको दी गई। वकानू मुजरिमीन, और वो मुजरिम थे। अल्लाह ने अपनी सुन्नत पेश की इस आयत में कि जब भी कभी अल्लाह की बात हुई अल्लाह ताला ने इस्तकामत वालों को बचा लिया, और उन लोगों को जो ऐसे वक्तों में अपने ऐश और आराम के मजों में पड़े रहे उनको पकड़ लिया। इस आयत में जो खूबसूरत लफ्ज है वो उलू बकी है, बकिया का लफ्ज पीछे भी पड़ा आपने हजरत शुएब की कौम में। बा असर और बा समझ लोगों के लिए यहां बात आई है। अक्ल को बकिया कहते हैं, अक्लमंद लोग मुराद है, यानी ऐसे समझदार लोग क्यों ना थे कि जो मुआशरे में फैले हुए फसाद और बुराइयों को रोकते। यही तो आज भी सवाल है हमारा, ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं भला? जैसे लोग मेडिकल पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं ना, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद इंजीनियर बनते हैं, आप ये कुरान पढ़ने के बाद क्या बनेंगे? अनिल फसाद फिल अर्थ, मुआशरे की गंदगी दूर करेंगे। क्लीनिंग की जॉब दे रहा है अल्लाह आपको इस कुरान के बाद, मुआशरे की तत्खीर और उसका तस्किया, लेकिन इल्ला कलीलन, थोड़े रह जाते हैं एंड पे, बिल्कुल हिम्मतें छूट जाती हैं लोगों की, और आखिर में सिर्फ क्रीम रह जाती है जिनके दिल इस जज्बे में भरे होते हैं कि हमने मुआशरे का गंद दूर करना है। अपनी जान बचाने वाले ज्यादा और दीन की जान बचाने वाले कम होते हैं, यही अल्लाह बता रहे हैं कि या तो कौम इतनी बिगड़ चुकी होती है कि ऐसे लोग ही बहुत थोड़े होते हैं, अक्सर लोग इस अहम काम को इग्नोर किए रखते हैं और जो करने वाले हैं वो अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त बचाने के पीछे रहते हैं। कौन मक्खियों के छज्जे में हाथ डाले और माँ उतरी फू। जिनको खैर की तरफ बुलाया जा रहा था वो दौलत वालों के पीछे लग गए। मजे, जॉब, फिर किसी को जॉब मिल जाएगी उधर चले जाएंगे, फिर कोई घर सजाने लग जाएगा फिर किधर, और जिधर जाते हैं लोग उधर चल पड़ते हैं। यानी जिस दौलत से इस कुरान ने निकाला था उनको, उनके दिलों को पाक किया था, ये लोग उसी दौलत की तरफ फिर चले गए। अल्लाह हमें ऐसा ना करे। ऐसी जगहों पे फिर अल्लाह का अजाब आता है। जहां बुराइयों से रोकने वाले लोग मौजूद होते हैं ना, वहां अजाब नहीं आता। इसलिए अगली आयत में अल्लाह ताला अपनी आदत बताते हैं, आयत 117, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्म वअहलुहा मुस्लिहून। और आपका रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे जबकि इनमें बसने वाले लोग इस्लाह करने वाले हों। अगर आप और मैं किसी मुआशरे में बुराइयों से रोकने वाले बन गए तो असल में हम उस मुआशरे और उस इलाके को अल्लाह के अजाबों से बचाने वाले बन गए, क्योंकि जहां लोग बुराई से रोकने वाले हों वहां अल्लाह का अजाब नहीं आता। अल्लाह ताला हमें इस काम में हिस्सेदार डाल दे, करवा दे हमसे ये काम। हमारे अंदर तो कोई खूबी नहीं दिखती। अब आखिरी आते हैं आयत 119, वलौ शा रब्बुका लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम नौ इंसानी को एक ही उम्मत बना देता। सारे रिलीजन खत्म होते, सब मुस्लिम हो जाते। सारे फिरके खत्म होते, सब खुद को मुसलमान कहलाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वला यजालून मुख्तलिफीन, लेकिन वो तो इख्तलाफ ही करते रहेंगे। ये जो ला यजालून है, पीछे मैंने आपको बताया था, नहीं टलेंगे। एक तर्जमा इसका ये और दूसरा तर्जमा हमेशा रहना, दोनों एक ही बात है। जब कोई किसी काम से टलता नहीं है तो फिर अखीर वो काम कर ही लेता है। मुराद यह है कि लोग इख्तलाफ करते ही रहेंगे। जहां लोग मिलजुल कर रहेंगे उनमें इख्तलाफ राय होगी। सोच फर्क, नुकता नजर फर्क, हर एक का अपना इस्तदलाल है, अपनी सोच है। तो अल्लाह कहता है ये तो चलता ही रहेगा, तू तो अपना काम करता जा, तू तो अपना काम करेगा। इसलिए आज जिन आयमा कराम ने दीन के अंदर मुख्तलिफ चीजों पर गौर किया, आज लोगों ने उन्हीं के नाम लेकर इख्तलाफ की बातें कर दी, तो करो क्या, अपने हिस्से का काम करो, लोगों को इस किताब से जोड़ो। अगर सारी दुनिया एक ही जैसी हो जाती तो यकसानियत भी तो आ जाती ना। आयत 119, इल्ला मर रहीम रब्बुक। इन सारे इख्तलाफों में जिस पे अल्लाह रहम कर दे वो बच जाता है। वलिजालिक खलकहुम, और इसी के लिए अल्लाह ने पैदा किया। इशारा क्या है? तौहीद की तरफ। दुनिया में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि तौहीद की जिम्मेदारियां नहीं अदा कर पाते। तो एक उम्मत यानी मुवाहिद बनने की बजाय मुख्तलिफ मजाहिब उनके बन जाते हैं, और कोई मन को पूछता है, कोई नफ्स को पूछता है, कोई दौलत को पूछता है। और इसी तरह लोग जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे, एक तो इससे मुराद वाली जालिका हलका हम से मुराद तौहीद कि अल्लाह को एक माने, और इसी तरह इससे एक और मानी है आजमाइश के लिए। यही तो आजमाइश है कि दुनिया की इन डिस्ट्रेक्शन से कौन अपने आप को बचाकर एक रब का बनता है। हक और बातिल के अंदर से हक को कौन चुनता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और आपके रब की बात पूरी हो गई। क्या बात है रब की, इसको हाईलाइट कर ले। लामलान जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमाइन, कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। दुनिया में तो फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा मजहब ठीक लगा लोगों को, कौन सा बुरा। कोई बात नहीं, जहन्नम में जाने के बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन किधर था। यहां पे बात पूरी हुई है वो ऊपर वाली। खुलासा के आखिरी बात का जो जल्दी में हुई, इसको समझ लीजिए कि दुनिया में सबको अल्लाह ने तौहीद के लिए पैदा किया था। वादा अलस्त यही था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। लेकिन लोग इस रास्ते की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो इसको छोड़कर दुनिया के पीछे लग जाते हैं, और खास तौर पे रिएक्शन से डरते हुए सब्र नहीं कर पड़ते। अल्लाह ने ऐसे वक्त में उलू बकिया को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तुम्हें अल्लाह ने अब कुरान की समझ दी है, तुम उठो और इस फसाद को रोको। लेकिन लोग दौलत के मजों में और दुनिया बनाने के शौक में इस काम को छोड़े रहते हैं। तो अल्लाह कहता है कि फिर एंड पे जाके फैसला होगा कि कहां तुम बुराई रोक सकते थे लेकिन तुमने नहीं रोकी। लेकिन जबरन अल्लाह किसी को हक पे नहीं जमा करता। ये है तम्मत कलिमतु रब्बी का। अल्लाह मुझे और आपको जबरदस्ती इस कुरान से नहीं जोड़ेगा, جب تک ہم خود نہ جڑنا رہیں جڑتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں اب پوری صورت میں جو سٹوریز آف پروفٹ نبی کو سنائیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں کہ نبیوں کی کہانیاں اللہ کے نبی کو کیوں سنائیں, کیونکہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے نبی, ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں. دیکھیں یہاں لفظ آ گیا نا انبائے رسل, قوموں پہ عذاب کی باتیں. قوم نوح کو سنائی, کیوں سنائی؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ آپ کا دل اس کے ساتھ مضبوط کر دیں. اللہ اکبر, آپ کے دلوں میں اطمینان ہو, استقامت ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے غم سنیں تو اپنا غم ہلکا لگتا ہے. حضرت نوح نے تو 950 سال تبلیغ کی, میں 10 سال میں گھبرا گیا. یہ مراد ہے, حالات کا سامنا ہوتا ہے. اب وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ, اب آ گیا آپ کے پاس حق. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور آپ کے پاس نصیحت بھی آ گئی اور یاد دہانی بھی آ گئی, یعنی اب آپ اس سے اپنے دل کو جما لیں. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے آتا تھا. جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اس کو کہانیاں سناتی ہے نا, چوٹ لگتی ہے تو ماں سٹوری سناتی ہے. اللہ کے نبی کے دل پہ لوگوں کی باتوں سے چوٹ پڑتی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہانیاں سنا کے مطمئن کر رہے ہیں, آپ فکر نہیں کریں. ان لوگوں کو دھمکی دے دیں کیا؟ آیت 121, وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے. کیا کہیں؟ آگے انورٹڈ کوما لگا لیجئے, اعملوا علی مکانتکم, تم کرتے رہو جو کام کرتے ہو, جو شوق ہے وہ کرو, سارے اپنے لاڈ چاو پورے کر لو دنیا کے. اِنَّا عَامِلُونَ, ہم بھی نہیں اپنا کام چھوڑیں گے, ہم بھی کرتے رہیں گے. کیونکہ فَاسْتَقِمْ, تمہاری مخالفتوں اور دشمنیوں سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا چھوڑا, تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کرتے ہیں. اور وَانْتَظِرُوا, تم بھی انتظار کرو. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ, ہم بھی منتظر ہیں. کس بات کے؟ آخری فیصلے کے. انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ کون اس دین کی طرف آتا ہے اور کون اس سے بھاگتا ہے؟ اور آخر میں پھر ہر ایک آ ہی جاتا ہے, کوئی بیماریوں کے بعد, کوئی ڈپریشنز کے بعد, کوئی تکلیفوں کے بعد. اور آخری آیت میں اللہ کی قدرت, کتنی بڑی ذات کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے, وہ چھوٹی بات نہیں ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور کل کا کل معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا. کرو کیا؟ یعنی یقین دلایا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے جس کے راستے میں تم نکلے ہو, یہ بہت بڑی ذات ہے. کرو کیا؟ فَاعْبُدْهُ, بس اس کے بندے بن جاؤ, اس کی بندگی کرو, اس کی غلامی کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اس پہ توکل کرو. کس بات پہ؟ کہ ان ساری مخالفتوں میں سے ایک دن تمہیں نکال لے گا. مکہ سے اب ہم آپ کو نکال کر مدینہ لے جائیں گے, کیونکہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, جو تم کر رہے ہو. یہ ستا رہے ہیں, فکر نہ کریں, ہم آپ کو مکہ سے لے جائیں گے. تو یہ ہیں وہ تسلیاں جو سچے مومن کے دل پہ اللہ ڈالتا ہے, بڑی سے بڑی مشکل پہ. میرے اور آپ کے لیے آخری پیغام کیا ہے سورت کا؟ کہ جب دین کے راستے میں ہم ستائے جائیں تو اپنا محاسبہ کریں. کیا حقیقی طور پہ ستائی جا رہی ہوں یا میری اپنی ہی نہ سمجھیے؟ تو ادفع باللتی ہی احسن والا معاملہ کیجیے, برائیوں کے جواب میں بھلائیاں کریں, نمازیں پڑھتے جائیں تو اپنی بری عادتیں چھوڑتے جائیں تو اچھی ہوتی جائیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے گہرا تعلق پیدا کریں, اور دوسرے لوگوں کی کہانیاں سن لیں جن کو اس راستے میں آزمایا گیا, تاکہ آپ کو اس کام کو کرنا مشکل نہ لگے. منزل پہ پہنچے ہوئے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے بعد کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل کھل جائیں, اور اس راستے کی آزمائشیں ہمیں کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹا سکیں. صورت بھی پوری ہوئی, سبق بھی پورا ہوا, وقت بھی پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کچھ باتیں رہ گئی تو وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ٹیوزڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وقت چونکہ بہت اوپر ہو گیا ہے, بس ایک جملہ سب لکھے آج کے سبق سے, کچھ بھی لکھیے, لکھی ہوئی اپنی شیئرنگ دے دیں. اور اب آپ کی بریک ہے, بریک کے بعد نماز ہے. چونکہ منڈے کی چھٹی مل رہی ہے تو تجوید کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا ایکسٹرا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی. جی سب لوگ آن لائن پہ بھی سننے والے لکھیں, یعنی فرض ڈال دو سب پہ امانت, ایک جملہ ضرور لکھیں. चाहे एक लफ्ज का जुमला हो या पूरा जुमला हो, कि आज के सबक से आपको क्या मिला, ठीक है? और आप सब भी लिखिए और लिखते जाएं, और उसके बाद आप लोग पीछे ब्रेक के लिए जा सकते हैं। कोई बोल के कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई इतराज नहीं है। जी इधर आ जाइए हजरत, ब्रेक है आप लोगों के लिए उसके बाद।
मुझे एक बात बहुत दिल पर लगी कि तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, ये कितनी दफा पहले आ चुका है। हम एवरी टाइम आई कॉन्सेंट्रेट ऑन इट कि इट्स इनएविटेबल, इट विल हैपन एंड इट्स राइट देयर एंड इट्स सो स्केरी, सो आई ऑलवेज थिंक दैट दे आर वेटिंग टू, सो व्हाट आर वी डूइंग टू मेक इट बेटर फॉर अस, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। But like in Ashkar, your lessons are overall it was the most impactful, one of the most impactful lessons we've had since we started the course. So may Allah make us from the people of Jannah and take us away from the fire of hell. So inshallah,
Amen. Amen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I want to share two things at the moment. MashaAllah, the lesson was full of, you know, full of beneficial notes, but two things. Overall, I don't know why, but I felt like I was being told off. It was a really serious lesson, you know. I just didn't feel, some lessons make you feel uplifted and you feel like you look around and you contemplate Allah's blessings. This lesson, I didn't feel that way. I just felt a bit worried and scared and my state. And the other thing, which is a bit positive, inshallah, all Quran is positive, but a little gem that Sazaji said, she said, to get everlasting rewards, you have to be consistent in doing good deeds in this dunya and the akhirah. So she said, this is something I'm taking away, that you, if you want the consistent everlasting reward, then be consistent in this dunya. This is something highlighted for me. Jazakallah khair.
Jazakallah khair. Jiram, aap kuch kehna cha rahe? Aajay. जी ऑनलाइन पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बाद में जरूर पढ़िएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
पूरा लेसन वाकई जिस तरह नादिया ने कहा कि बहुत डराने वाला था, और मुस्तकिल मैं भी अपना मुहासबा कर रही थी, मेरे साथ कुछ कल ऐसा वाकया हुआ तो मैं उसको अपने सामने रख के सोच रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। वाकई हम लोग बहुत जोश में आ जाते हैं और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन बस मुझे तो बहुत ही इस लेसन से, और मैंने अभी जिनसे मेरी कुछ बात थी मैंने उनको फोन किया, उनका हाल पूछा और इस तरह करके, तो बस अल्लाह सुबहाना ताला हमें अमल की तौफीक अदा फरमाए, क्योंकि बहुत कमी है इस चीज़ की। मैं अपनी बात भी करूँगी कि वाकई बहुत कमी है, तहम्मुल होना चाहिए, जोश नहीं आना चाहिए, और जो भी बात है सोच समझ के और इस्तेकामत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी चाहिए कि हम जम के काम करें और किसी भी मजबूरी की वजह से पीछे ना हटे इंशाल्लाह। तो जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए, आप माइक होल्ड कीजिए ऑनलाइन से।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर वासन जज़ा उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेसन हमारा, और इंशाल्लाह सिस्टर अमरीन आप प्लीज माइक लें तो आप अपनी शेयरिंग करें इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मेरी आवाज आपके पास आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे सिस्टर्स, ये कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, और प्लीज मुझे माफ करिएगा कि अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो। आई एम सॉरी, मैं अपने टीयर्स रोक नहीं पा रही हूँ। कल रात में, एक्चुअली कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इंडिया में अभी फिलहाल एक ऐसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बनकर आया है कि वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अब मुझे ये बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि मेरे रिश्तेदारों का, मेरे मुसलमान भाई बहनों का اب کیا ہوگا, کیونکہ انڈیا میں صرف 15% پاپولیشن ہے مسلمانوں کی اور باقی 60-70% نان مسلمس کافروں کی پاپولیشن ہے, اسپیشلی ہندو. تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور میں روز اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ پاک اب مسلمانوں کا کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو واٹ کین آئی ڈو, ہاؤ کین آئی ہیلپ دیم, آئی ایم سوری. آج اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا آنسر دے دیا کہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں استقامت رکھنی ہے, ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے, اور اگر دین پھیلانے والے ہر جگہ پر ہو بھی اس جگہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمائے رکھے گا اور ان کو تباہ برباد نہیں کرے گا. یہ فیل ہوا آج مجھے لیسن سننے کے بعد کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. کل رات میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور یہ تھا کہ مجھے تجوید کی پریپریشن کرنی تھی, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, بٹ پھر بھی میں بیٹھے رہی اور سوچتے رہی کہ اللہ پاک اب میں کیا کروں, کیسے کروں. ایسا لگتا ہے کہ یو نو ایون اف یو گیٹ 4 hours اور وٹ ایور ٹائم یو گیٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی ٹائم دیتا ہے اور آپ جس طریقے سے بھی وہ کام کرتے ہو وہ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا اور آپ کو جمائے رکھے گا. اور مجھے بہت زیادہ ایک سیٹسفیکشن ملا الحمدللہ کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرے بھائی بہنوں کو, میرے رشتہ داروں کو اور میرے عزیز دوستوں کو انڈیا میں کچھ نہیں ہوگا, اللہ کر کے مطلب پوری طرح اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ. میں نا سب سے میں دعا کرتی ہوں, میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز سب انڈیا کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں رکھنا, کیونکہ یہ جو بندہ پولیٹیشین پرائم منسٹر بن کر آیا ہے یہ بہت کٹر ہندو ہے اور بہت مسلمانوں کا دشمن ہے, بہت شدید دشمن ہے. تو اس لیے پلیز پلیز سب کو دعا میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے وہاں پر بھی, اور ہمیں اپنا بس کام کرتے رہنا ہے اور سب سے پہلے اپنے کورس کا حق ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ یو نو یہ جو دین کی جو روشنی ہے اس کو پھیلاتے جانا ہے. میں یہ بات جب لاسٹ مطلب لاسٹ نائٹ میرے فیملی کے ساتھ ہم لوگ کی روز ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں, گھر میں کسی نے کہا کہ میں نے جب یہ قرآن شریف کی آیت کوٹ کی تھی کہ ایک ایک مسلمان 10-10 کافروں پر بھاری پڑتا ہے, تو مجھے گھر میں یہ سننے کو ملا کہ تم اس ٹائم کی بات کر رہی ہو جبکہ صحابہ ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہوا کرتے تھے, اس ٹائم پر قرآن شریف نازل ہوا تھا. لیکن اب مجھے آنسر مل گیا ہے کہ صحابہ جیسا تقویٰ تو ہم بھی لا سکتے ہیں اور ہم بھی ہمارے اپنے اندر استقامت پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی نمازیں سیدھی کریں, ہم اپنا دین سیدھا کریں, اگر ہم اپنے قرآن کا حق ادا کریں. تو وہ تقویٰ جو صحابیوں کے اندر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے اندر, وہ ہم میں بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, ہم بھی ایک ایک مسلمان 10-10 کافروں پر بھاری پڑ سکتے ہیں, بشرط یہ کہ بس ہم لوگوں نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے, اپنے کام پر قائم رکھنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بیک ڈاؤن کہ 4 hours نیند مل رہی ہے یا پھر ٹیسٹ زیادہ ہے یا پھر اسائنمنٹس نہیں پورے ہو رہے, کرنا ہے اور ہر چیز اچھے سے اچھی طریقے سے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو بی دا مطلب یو نو وی میں ایک سیم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈونٹ کرس دا ڈارکنیس, لائٹ اے کینڈل اف یو کین. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی, آئی ایم سوری میں نے بالکل کچھ پریپیئر نہیں تھا, اس لیے اگر کچھ غلط نکل گیا ہوگا تو مجھے معاف کریے گا. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاکم اللہ خیر کثیر, الحمد للہ ہر جگہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے درمیان میں بھی بہت ساری خیر ہمارے لیے رکھی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کو وہاں سے بھی مدد آئی ہے. تو اتنا اس بات کو فوکس نہ کریں کہ کیا مشکل آ رہی ہے, بلکہ انشاءاللہ ان سب چیزوں کے جو حل ہیں اس کو تلاش کر کے اور اوروں کو بھی سکھانا کہ جہاں کہیں مسلمان اگر کہیں مشکل میں ہیں, پوری دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں, تو ان سب تک یہ چیز پہنچانی ہے اصل مقصد ہے. انشاءاللہ سسٹر شاہین آپ بھی مائک لے لیں پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے لیسن سے مجھے جو سب سے بیٹر چیز لگی, اور مجھے واقعی میں آئی کین ریلیٹڈ ٹو مائی سیلف, جو استاذہ نے استقامت کی بات بتائی. اور اگر ہم قرآن کا کورس ہو گیا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے کر لیا, اور پھر ہم واپس دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں جو ہمارا جو دوسرا کورس تھا وہ کورس کمپلیٹ ہوا, اس کے کچھ کام پینڈنگ تھے, اور آئی کوڈ فیل اٹ ان مائی لائف کہ میں کچھ نہ کہیں جو کلاس کا ٹائم ہوتا تھا تو ایمان کا لیول ایک دم ہائی رہتا تھا, اور سارے گھر کے سب کام ساتھ میں ہو جاتے تھے. اور جب ہماری کلاس تکمیل پہ آئی, کلاس کمپلیٹ ہو گئی, تو آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ کہ میں واپس دنیا میں میرے جو دوسرے کاموں میں آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انوالوڈ, اور میں پھر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا تھا کہ میں لیک کر رہی ہوں جو پہلے کلاسز کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اب میں اس طرح سے میرے ایمان کا لیول نہیں تھا, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ اگر میں نے استقامت نہیں دکھائی, اگر میں کنیکٹڈ نہیں رہی, یا اگر میں نے کہیں کچھ ڈھیل چھوڑی, تو شیطان از ویری اسٹرانگ اور وہ ہمیں کیسے بھی کہیں سے بھی پھسلا سکتا ہے. تو آئی ریئلی فیلٹ کہ ہمیں کہیں بھی وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اٹ ان, اور ہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں کدھر بھی جڑ کے رہیں, ہمارے کام کرتے رہے, ورنہ ہم کافی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور جو آیا نمبر 114 تھی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ واقعی میں یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی میں کہہ سکتی ہوں. اور الحمدللہ جو استاذہ جی نے جو بردر کی شیئرنگ سنائی تھی کہ نیکیاں بالکل برائیوں کو پیچھے کر دیتی ہیں, اور ہمارے پاسٹ کے جو پاسٹ کی غلطیاں ہیں ہمیں خود ریئلائز ہوتا ہے, ہم خود فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ غلطیوں کو معاف کر دے. ہمیں ندامت ہوتی ہے ہماری غلطیوں پہ, اور جب ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے یا کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں کہ جو پاسٹ کے گناہ ہیں, جو غلطیاں ہیں, کیا ول دس سفائس اٹ, کیا یہ اس کے لیے انف ہے, اور اس سے آگے اور بھی ایمان ہائی ہوتا ہے کہ نہیں, وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈو. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ جوڑے رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ارکیب دا شیئرنگ شاٹ کی ٹائم ہو گیا. آج کے لیسن سے میں نے یہ پوائنٹ بہت ہٹ ہوا مجھے کہ میری آواز آ رہی ہے جی, کہ برے کام کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے. کیونکہ اکثر ہمیں جب لگتا ہے کہ آپ یو آر ڈوئنگ کوشش اپنی طرف سے اور دوسرے نہیں ماننے, دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں دکھ رہا جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بات, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, دین سارٹ آف ایک غصہ آنے لگتا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ شوئنگ یور سارٹ آف انا اوپر آتی ہے. تو کل ایسا ایکسپیرئنس ہوا کہ کل میں میرے بچے کے اسکول کو گئی تھی, اینڈ دے ہیڈ دا گریجویشن سیرمنی, اینڈ دے ہیڈ میوزک وغیرہ. تو آئی فیلٹ ویری کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ پلیس. اندر سے جیسے روح چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ یو شوڈ ناٹ ہیو بین ہیئر, کہ مے بی یو شوڈ ناٹ ہیو کم اینڈ آل دیٹ. بعد میں بہت غصہ بھی آیا, لیکن آج کے لیسن سے مجھے یہ پتا لگا کہ لوگ آل دو اراؤنڈ یو اس طرح سے یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو بی لائک دیٹ, لیکن وہ لوگ برا کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اچھا کرنا چاہیے. تو مجھے لگا کہ اٹ واز اے رانگ ڈیسیشن میرا کہ میں گئی ادھر, اور نا آئی وینٹ تھرو آل دیٹ ایموشنس. لیکن جیسے استاذہ نے بتایا کہ لوگ برا بھی کریں, آپ صرف اچھا کرو اپنی طرف سے. دیٹ واز اے بگ میسج فار می اینڈ بگ ریئلائزیشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر استقامت دے, توفیق دے, اور سارے سسٹرز کو ہمت بھی دے. سسٹر امرین, اٹ ہیز بین گوئنگ تھرو آر ہارٹس ٹو سنس لاسٹ ویک. ہمارے میاں تو اتنے ہی واز اپسیٹ, لیکن آئی واز ٹیلنگ مائی سیلف ہیو توکل آن اللہ, ہی از دیر, ان شاء اللہ ویل کم تھرو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاکم اللہ خیرین کیسی. الحمد للہ آپ سب کی شیئرنگس ماشاء اللہ
गुड, और यही स्पिरिट है कि जो इंशाल्लाह हमें मजीद अच्छा होने में मदद देगा। और पर्सनली आई स्पीक, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा एक तरह से लग रही थी कि कुरान है हमारी असल इस्तकामत की चीज, और कुरान के साथ ताल्लुक सिर्फ ये 4 घंटे की क्लास का नहीं है, बल्कि हम अपनी रिसाइटेशंस के जरिए इसको हिफ्ज करने के जरिए, इसको औरों तक पहुंचाने के जरिए, अब चाहे पहुंचाने का तरीका वर्बली हो, लिखने के अंदाज से हो, या अपने अमल के अंदाज से हो, किसी भी तरह 24/7 ये ताल्लुक रखना है। जितना हो सके इंशाल्लाह इस चीज को साथ रखेंगे। समटाइम आपको पता क्या होता है कि हमारे दिल को ना शैतान किसी फिक्र में मसरूफ कर देता है, यानी मुश्किल आती है, हर शख्स की जिंदगी में आती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उस मुश्किल को लेकर और सोचते रहें बार बार, और जो कि शैतान करता है बार बार कि वो सोचवाता रहेगा आपको कि ऐसा 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 क्यों हो रहा है, क्या करें, तो आप परेशान रहेंगे, और जब हम परेशान रहते हैं तो फिर हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। तो इसलिए असल काम अब हमने क्या सीखा है कि हम इस कुरान के जरिए औरों तक भी रोशनी फैलाएंगे। ठीक है, मैं बोलूं अगर हम मुसलमान खुद मुस्लिम बन जाएं तो डर नहीं रहता एट ऑल। और सही बात, और सबसे बड़ी बात क्या है हम सब के लिए कि हम गालिब हैं, कामयाब हैं, कब तक, जब तक कि हम ईमान रखते हैं, जब तक कि हमारा ईमान अच्छा है। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। जी बिल्कुल, एंग्शियस एंड अनप्रोडक्टिव, बिल्कुल सही बात है, और यही सबसे बड़ी चीज है कि हमारे हाथ पांव रुक जाए, और ये इसमें फिर शैतान कामयाब है कि मजीद खैर नहीं फैल रही। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंशाल्लाह अपनी क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, टाइम मुकम्मल है। ठीक है, आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे, अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव इंक्लूडेड देम। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इनको उस्ताद तक पहुंचा दें। अल्लाह सुभान तआला की मदद आएगी इफ वी स्टे ऑन द राइट पाथ इंशाल्लाह। अल्लाह की राह में तो गाजी है शहीद भी बनते हैं। सही बात है, और हमने देखा है ना कि इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, अल्लाह ताला की तौहीद को दूसरों तक, यानी कि अल्लाह ताला की तौहीद को अपनी एक्शंस में लेकर आना, और अपने हर अमल को बस अल्लाह की खातिर करना, इस तौहीद को अमली नमूना बनाकर पेश करने के लिए। और या फिर दूसरी बात की आजमाइश, तो हर शख्स की आजमाइश फर्क है, हमारी आजमाइश कुछ और है, किसी और की कोई और है। ठीक है जी, चलिए, जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت